यदि गोली का आवरण बहुत कमजोर था तो वह उसे मजबूत बनाता था, यदि गोली का आवरण टिकता था तो वह मैजिक क्रिस्टल पाउडर का अनुपात बढ़ा देता था। लेकिन जैसे ही शक्ति बढ़ती थी, लोहे की बंदूक इसका सामना नहीं कर पाती थी और टूट जाती थी। सांचे को हाथ में लेकर वह जो भी टूटा उसे मजबूत कर देता था, और यदि कुछ नहीं टूटता था तो वह जादुई क्रिस्टल पाउडर का अनुपात बढ़ा देता था। अनेक प्रयोगों के माध्यम से मरे ग्रीन ने चांदी तांबा लोहे के मिश्रित पदार्थ से बनी एक सरलीकृत बंदूक प्राप्त की, जिसमें चांदी की गोली का आवरण, तांबे की गोली का सिरा तथा मैजिक क्रिस्टल पाउडर था, जो बारूद का एक चौथाई भाग बनाते थे। मरे ग्रीन मुस्कुराए, उनके हाथ लगातार बंदूक को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे थे और फिर से जोड़ रहे थे, बार बार लोड करने, फायर करने और फिर से लोड करने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। वह कभी कभी बंदूक को चमकाने और एडजस्ट करने के लिए रुकते थे, अंत में अंतिम रखरखाव के लिए सभी घटकों को मॉन्स्टर ग्रीस से पहुंचते थे। जब तक वह बंदूक का डिब्बा लेकर लोहार की दुकान से बाहर निकला, शाम हो चुकी थी। मरे ग्रीन ने तारों की ओर देखा, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचा और ढीला छोड़ा। इस समय उसकी उत्तेजना में दबी थकान उभर आई। वह इतना थक गया था कि उसने दिन भर का ध्यान भी नहीं किया, सीधे बिस्तर पर चला गया। अगले दिन मरे ग्रीन को राइन ग्रीन ने जगाया, जो अभी अभी मनो में पहुंची थी। मैंने सुना है कि तुम कल पूरे दिन लोहार की दुकान में शोर मचाते रहे और दूसरे लोहारों को डराते रहे जो दूसरे कमरों में थे, और उन्हें डर था कि तुम वहां मर जाओगे। तुम वहां क्या कर रहे थे? राइन ग्रीन अक्सर इस मनो में नहीं आते थे, क्योंकि यह हिल सिटी के बाहर था और स्कूल के करीब भी नहीं था, इसलिए राइन ग्रीन आमतौर पर स्कूल में ही रहते थे। लेकिन कल उसे नौकर से खबर मिली कि युवा मालिक मरे ग्रीन वापस आ गया है और पूरे दिन लोहार की दुकान में शोर मचाता रहा है। ये सुनते ही राइन ग्रीन वापस भागा। आह, मरे ग्रीन ने आंखें सिकुड़ी और जम्हाई ली और तुरंत पूरी तरह से जाग गया। फिर एक रहस्यमय भाव के साथ उसने अपने कवर के नीचे से बंदूक का डिब्बा निकाला और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक आप मुझे आज कायास पर्वत पर शिकार के लिए नहीं ले जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर तुम शिकार पर जाना चाहते हो तो कह दो, इतना रहस्यमयी व्यवहार क्यों कर रहे हो? हे, मैं गारंटी देता हूं कि मेरा ये खजाना आपको बहुत आश्चर्यचकित करेगा। ये कहते हुए उसने राइन ग्रीन को अपने साथ खींच लिया और वे जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार होकर कायास पर्वत पर चले गए। जब वे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़े तो राइन ग्रीन ने आखिरकार मरे ग्रीन को बंदूक का डिब्बा बाहर निकालते और उसे खोलते हुए देखा, जिसमें छोटे अपरिचित भागों का एक संग्रह दिखाई दिया। तुम बिना हथियार के पहाड़ों में शिकार करने जा रहे हो, बस यही? क्या तुम यहाँ जंगली जानवरों को खाना खिलाने आए हो? राइन ग्रीन की शंका सुनकर मरे ग्रीन दो बार हंसे, आगे बढ़े, उनके कंधे थपथपाए और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा छोटा भाई जादू में माहिर है। उसकी मानसिक शक्ति उसी कक्षा के अपने सहपाठियों में बेजोड़ है, यहाँ तक कि शिक्षक भी ऐसा कहते हैं। मैं कोई अतार्किक काम कैसे कर सकता हूँ? प्रतिभा और पागल का अंतर बस एक विचार से है। मुझे डर है कि कहीं आप गलती से पागल न बन जाएं। चिंता मत करो, अपने बड़े भाई राइन ग्रीन के साथ बातचीत करते हुए मरे ग्रीन के हाथ लगातार चलते रहे। एक झटके में उन्होंने कुशलता से सभी पुर्जे जोड़ दिए और एक पिस्तौल, जो मैजिक क्रिस्टल गन जैसी थी लेकिन आकार में छोटी थी, उनके हाथ में आ गई। ये देखकर राइन ग्रीन और भी अधिक उलझन में पड़ गई। तुम्हारा यह खिलौना मैजिक क्रिस्टल गन जितना भी उपयोगी नहीं है। मैजिक क्रिस्टल गन में कम से कम बहुत ताकत और तेज आवाज होती है, भले ही ये किसी जादुई जानवर को न मारे, लेकिन यह उसे डराकर भगा सकता है। तुम्हारा खिलौना तो बस साधारण सामग्री से बना है और इसमें मैजिक एरे भी नहीं है। तुम आखिर क्या सोच रहे थे? मेरी यह बंदूक मैजिक क्रिस्टल गन जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह अधिक सुविधाजनक है। मरे ग्रीन ने एक गोली लोड की, उसे एक क्विक ड्रॉ होलिस्टर में डाला और होलिस्टर को अपनी दाहिनी जांघ पर बांध लिया। उसने अपनी कमर पर अपनी मैजिक क्रिस्टल गन भी लटका ली। अपने पास दो बंदूकें लिए हुए मरे ग्रीन हिम्मत दिखाए और आगे बढ़ गया। हे, तो फिर मैं देखूंगा कि तुमने आज के लिए किस तरह के प्रदर्शन की तैयारी की है। अपना सिर हिलाते हुए राइन ग्रीन अपने कंधे पर दो हाथों वाली तलवार लिए हुए मरे ग्रीन के पीछे पीछे चला। कायास पर्वत बहुत बड़ा नहीं था और हर साल बहुत से छात्र वहां आते थे। पहाड़ी रास्ता अपेक्षाकृत आसान था। जानवरों के वितरण मानचित्र का अनुसरण करते हुए मरे ग्रीन को जल्द ही गश्त पर एक जंगली भेड़िया मिला। उन दोनों ने जंगली भेड़िए की ओर देखा और जंगली भेड़िए ने भी उन्हें देख लिया। बैंग! जंगली भेड़िए ने अपने दुश्मनों को देखकर अपना मुंह खोल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह चीख पाता, उसका सिर तुरंत टूट गया और उसके बाद एक जोरदार गोली चली। ओह! मरे ग्रीन ने थूथन से निकलने वाले सफेद धुएं को हल्के से उड़ा दिया। उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने विजयी भाव से राइन ग्रीन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। राइन ग्रीन ने यह सब देखा और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर मरे ग्रीन के हाथ में पिस्तौल को अविश्वास के भाव से देखा। उसका हाथ ढीला हो गया और उसकी बड़ी तलवार जमीन में धंस गई। मरे ग्रीन को अपनी आंखों के सामने केवल धुंधलापन महसूस हुआ और उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल राइन ग्रीन के हाथ में आ गई। राइन ग्रीन ने पिस्तौल को पकड़ लिया, उसे ऊपर से नीचे तक जांचा, कभी कभी उसकी आवाज सुनने के लिए उसे थपथपाया और यह पता लगाया कि उसमें कौन सी सामग्री है। काउंट ग्रीन के पहले वारिस के रूप में राइन ग्रीन के लोहार कौशल मरे ग्रीन की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और गहन थे। अगर वह अन्य योद्धा व्यवसायों में नहीं गए होते तो राइन ग्रीन बहुत अच्छी तरह से एक की में अगर बन सकते थे। अद्भुत, मुझे जादुई क्रिस्टल विस्फोट की आभा महसूस हो रही है। आपकी यह चांदी तांबा लोहा मिश्रित सामग्री जादुई क्रिस्टल विस्फोट की शक्ति का सामना नहीं कर सकती और इससे निकलने वाली गोली वास्तव में एक जंगली भेड़िए को मार सकती है। भले ही इसकी मारक क्षमता शुद्ध मैजिक क्रिस्टल गन जितनी न हो, फिर भी ये लेवल एक के प्राणियों के लिए खतरा बन सकती है। यहां तक कि लेवल एक जादुई जानवर भी अगर सिर पर लग जाए तो बच नहीं पाएगा। पिस्तौल पर टिप्पणी करते हुए राइनग्रीन तेजी से आगे बढ़ा और 50 मीटर दूर जंगली भेड़िए के पास पहुंच गया। उसने जंगली भेड़िए के घावों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उसकी पूरी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी, केवल उसके सिर के पीछे एक बड़ा खूनी छेद बचा था। इसके अलावा 50 मीटर की सीमा पर ऐसी शक्ति के साथ यह एक निश्चित सीमा तक मैजिक क्रिस्टल गन के निम्न स्तर के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। अरे, यह मेरा विशेष काम है। जब आप इसे पर्याप्त देख लें तो इसे मुझे वापस कर देना। दौड़ते हुए मरे ग्रीन राइन ग्रीन के पास पहुंचे, राइन ग्रीन के हाथ से पिस्तौल छीन ली, फिर लोडिंग चैम्बर खोला और उसमें से एक चांदी की गोली का खोल निकाला जिसकी सतह पर छोटी छोटी दरारें थीं और तापमान बहुत अधिक था। ये पता चलने पर राइन ग्रीन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई गोली के खोल को पकड़ लिया। ये पूरी तरह से चांदी का बना था लेकिन इसके अंदर कालापन भरा हुआ था और नीचे की सील बिंदु पर एक अनियमित छेद दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे देखते हुए राइन ग्रीन ने दोनों हाथों से उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। बारूद के विस्फोट से बचे अवशेषों को अपनी उंगली से पोंछते हुए वह अंदर छोटी छोटी दरारों का घना जाल देख सकता था। राइन ग्रीन को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह गोली का आवरण ही वह कुंजी थी जिसके कारण साधारण पदार्थ जादुई क्रिस्टल विस्फोट को झेल सकते थे। जादुई क्रिस्टल जादुई कणों और कुछ खनिजों के सम्मिलन से बनने वाले ऊर्जा क्रिस्टल हैं। एक बार सक्रिय होने पर उनकी विस्फोटक मारक क्षमता विशेष रूप से अधिक होती है। यदि मैजिक क्रिस्टल गन से दागी गई गोली की शक्ति की तुलना लेवल एक फायरबॉल मंत्र से की जा सकती है तो मैजिक क्रिस्टल गन के अंदर विस्फोट की तीव्रता कम से कम दो फायरबॉल मंत्र के बराबर होती है। यदि मैजिक क्रिस्टल गन पर लगा मैजिक एरे सक्रिय होने पर ऊर्जा का कुछ भाग न ले तथा सक्रिय होने के बाद मैजिक एरे गन बॉडी को मजबूत न बना दे और प्रतिक्षेप को कम न कर दे तो मैजिक क्रिस्टल गन भी मैजिक क्रिस्टल विस्फोट की पूरी क्षति को झेलने में सक्षम नहीं होगी। चूंकि बंदूक का शरीर स्वयं मैजिक क्रिस्टल विस्फोट से होने वाली क्षति को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैजिक क्रिस्टल को बंदूक के शरीर से अलग कर दें और उन्हें बुलेट आवरण से अलग कर दें। यहां तक कि यदि जादुई क्रिस्टल विस्फोट से होने वाली क्षति बहुत अधिक हो तो चांदी की गोली का आवरण अधिकांश शक्ति को बेअसर कर देगा और जो बचेगा वह बंदूक के शरीर के लिए बहुत अधिक नहीं होगा। कारण और प्रभाव पर विचार करने के बाद राइन ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका तरीका चतुराईपूर्ण है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। साधारण सामग्री फिर भी साधारण सामग्री ही है। यहां तक कि मैजिक क्रिस्टल पाउडर की एक छोटी मात्रा के साथ साधारण सामग्रियों के लिए प्रत्येक शॉट अपनी अखंडता का परीक्षण है। आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि बंदूक का ढांचा या गोली का आवरण अगली बार टिकेगा या नहीं। एक बार जब यह टिक नहीं पाता है तो आपके लिए यह आपके हाथ में फटने वाले एक कमजोर फायरबॉल मंत्र से कम नहीं होगा। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपकी हथेली उड़ जाएगी, यदि नहीं तो आप सीधे अपनी जान गंवा देंगे। राइन ग्रीन ने विराम लिया, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उनकी आवाज नर्म हो गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, छोटे मरे, आपकी जादुई प्रतिभा उत्कृष्ट है। आपको अपना समय साधना पर लगाना चाहिए, न कि उस पर जो शॉर्टकट लगता है लेकिन वास्तव में एक चक्कर है। राइन ग्रीन का मार्गदर्शन सुनकर मरे ग्रीन को भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। उन्होंने कल का पूरा दिन शोध में बिताया, 3 बंदूकों को उड़ाया और 30 से अधिक गोलियों के खोलों का प्रयोग किया ताकि वर्तमान सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किया जा सके। दो दुनियाओं के ज्ञान को मिलाकर उन्होंने जो परिणाम तैयार किया उसे राइन ग्रीन ने थोड़े अध्ययन के बाद मोटे तौर पर समझ लिया, जिससे ये साबित हो गया कि गोली के खोल का उपयोग करने का उनका सिद्धांत जटिल नहीं था। हालांकि आग्नेयास्त्रों और बारूद के आविष्कार के 1000 साल बाद भी गर्म हथियारों ने महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी, जो उनके संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों या प्रवृत्तियों के कारण था। इस संसार के लोगों की दृष्टि में साधना से व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है, पृथ्वी पर आ सकता है, अजय हो सकता है तथा सब पर विजय प्राप्त कर सकता है।
जब वे समस्याओं का सामना करते हैं तो वे हताश होकर साधना करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि शक्तिशाली ताकत कई कठिनाइयों को कम कर सकती है।
ऐसी परिस्थितियों में राइन ग्रीन इस बंदूक को देखकर आश्चर्य से चिल्ला सकता था, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता था क्योंकि अधिक शक्तिशाली मैजिक क्रिस्टल गन भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह इसका तिरस्कार करता था, लेकिन तीसरे स्तर के योद्धा के रूप में राइन ग्रीन की शक्ति के साथ, भले ही प्रतिद्वंद्वी स्थिर खड़ा हो, मरे ग्रीन बंदूक को टुकड़े टुकड़े कर सकता था और फिर भी उसकी तलवार की धार को नहीं तोड़ सकता था।
राइन ग्रीन के लिए मजबूत बनने के लिए खेती पर निर्भर रहना एक व्यापक और खुला रास्ता था, और इस पर तेजी से आगे बढ़ना ही वह काम था जो उन्हें करना चाहिए।
इसलिए राइन ग्रीन इस बात से कुछ हद तक भ्रमित थे कि मरे ग्रीन इन चतुर चालों पर शोध करने के लिए अपना साधना समय बर्बाद कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मनाने की कोशिश की। अपने बड़े भाई की बात का मतलब समझते हुए मरे ग्रीन अपने मन में व्यंगपूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यद्यपि वह तकनीकी विकास की असीम संभावनाओं से परिचित थे, परंतु इसके साकार होने से पहले यह महज एक मजाक था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए राइन ग्रीन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मेरी जादुई प्रतिभा कितनी अच्छी है यह मैं अभी भी नहीं जानता। यदि संभव होता तो मैं भी 24 घंटे ध्यान कक्ष में रहना चाहता, लेकिन शिक्षक लिंडन ने मुझे जल्दबाजी न करने को कहा। जादू की साधना के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु मन को शांत करना तथा आत्मा को शांत करना आवश्यक है। मैंने पहले बहुत अधिक खेती की और लगभग स्वयं को बहुत अधिक थका लिया। यदि टीचर को पहले ही इसका पता न चलता तो ये परेशानी का सबब बन जाता। इस बारे में बोलते हुए मरे ग्रीन ने अपने हृदय को भय से थपथपाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आपदा से बाल बाल बच गए हों। तो इन 2 दिनों में मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए इस पर शोध कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मैं कुछ शोध परिणामों के साथ आ सकता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मैं कुछ जीवन रक्षक हथियार बना सकता हूँ। यदि मुझ जैसा कोई जादू का प्रतिभाशाली व्यक्ति, युद्ध कानून का ज्ञाता, राजकुमारी एलिजाबेथ के लिए प्रतियोगिता के दौरान गलती से किसी और की योजना का शिकार हो जाए, तो क्या ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? ओह, तो ये बात है। राइन ग्रीन ने अपना सिर रगड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी कुछ एहसास हुआ हो। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मरे ग्रीन से कहा, मैंने कुछ पूछताछ की है। राजकुमारी ने स्कूल शुरू होने के 2 महीने बाद एक भोज आयोजित करने की योजना बनाई है। भोज से पहले सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। ये सुनकर राइन ग्रीन की आंखें सिकुड़ गईं। भोज के बाद हर आदमी अपने लिए रहता है, लेकिन चिंता मत करो, पिताजी और माँ ने ये खबर मिलने के बाद पहले ही व्यवस्था कर ली है। बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें और 1 महीने से कुछ अधिक समय में ही बड़ी छाप छोड़ने का प्रयास करें, जिससे राजकुमारी का ध्यान जीत सकें। भले ही आप राजकुमारी के पति नहीं बन पाएं, लेकिन प्रेमी बनना आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। हा हा हा, यहां से चले जाओ। मैं मरे ग्रीन एक जादुई देवता बनने के लिए नियत हूं, जो 3 महान साम्राज्यों को पार करने और एक अद्वितीय दिव्य साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम हूं। उसे मेरा प्रेमी बनने के लिए कतार में लगना होगा और अपनी बारी चुने जाने का इंतजार करना होगा। ये कहते हुए दोनों भाई एक साथ जोर से हंसने लगे। छोटे मरे, मैंने पहले कभी यह क्यों नहीं देखा कि तुम में इतनी हास्य प्रतिभा है। आपके शब्द बहुत दिलचस्प हैं। हम पहले भी पहले था, अब भी अब है। जो विद्वान 3 दिन से अनुपस्थित है उसे नई नज़र से देखा जाना चाहिए। मैं मरे ग्रीन 3 सप्ताह से स्कूल में हूँ और मुझ में पहले से ही पूर्ण परिवर्तन आ चुका है। मरे ग्रीन ने बोलते हुए पिस्तौल को पुनः लोड किया और फिर राइन ग्रीन को अपनी योजना बताई। राइन ग्रीन ने सहमति में सिर हिलाया, अपनी फेंकी हुई बड़ी तलवार उठाई, अपने पैरों को मोड़ा और सचमुच एक पेड़ की शाखा पर छलांग लगा दी। उसका शरीर शाखाओं के भीतर छिप गया। मरे ग्रीन स्वयं जंगली भेड़िए की लाश से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर अपने चारों ओर भेड़िए की लगातार आती हुई चीखें सुन रहे थे तथा भेड़ियों के झुंड के स्थिति का जायजा लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में अल्फा भेड़िए ने यह देखा कि इस जंगली भेड़िए ने झुंड की ओर कोई आवाज नहीं लगाई है, इसलिए वह चुपचाप 4 मजबूत रक्षक भेड़ियों के साथ उस क्षेत्र में पहुंच गया। मरे ग्रीन ने स्थिर खड़े होकर अपनी दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से में पिस्तौल रखी हुई थी। उसका दाहिना हाथ बंदूक की पकड़ को सहला रहा था। वह किसी भी क्षण बंदूक निकालने और गोली चलाने के लिए तैयार दिख रहा था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, जो सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, ने मरे ग्रीन को उत्कृष्ट एकाग्रता प्रदान की। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करती रहती थीं और उच्च सतर्कता की स्थिति में वह घास में किसी भी सरसराहट या हवा में किसी भी हलचल को तुरंत महसूस कर लेता था। अचानक मरे ग्रीन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बंदूक निकाली और उसे एक हाथ से पकड़कर अपने शरीर को तेजी से घुमाया और बंदूक की नाल को ठंड के स्रोत की ओर तान दिया। ध्यान से देखने पर उसे एक झाड़ी में एक भेड़िए की पूंछ दिखाई दी। अतः मरे ग्रीन ने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच दिया। परिणाम को देखे बिना उसने ब्रीच को खोला, लोडिंग क्षेत्र को उजागर करने के लिए बैरल को नीचे की ओर मोड़ दिया, उसे झुका दिया और शेष गोली का खोल बाहर गिर गया। मरे ग्रीन ने अपने बाएं हाथ से जेब से एक नई गोली निकाली, उसे चैम्बर में डाला और ब्रीच को बंद कर दिया। आओ आओ आओ। तभी मरे ग्रीन ने, जो अभी भी तैयार अवस्था में था, एक शोकाकुल भेड़िए की चीख सुनी और देखा कि एक मजबूत रक्षक भेड़िए को कमर में गोली लगी थी और गोली ने उसके पिछले पैरों में से एक को भी फाड़ दिया था। यह एक घातक चोट थी, इसलिए वह केवल वहीं पड़ा रह सकता था, रो सकता था और मौत का इंतजार कर सकता था। यदि यह अतीत में हुआ होता तो मरे ग्रीन ने इसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया होता, लेकिन उसने देखा कि तीन रक्षक भेड़िए प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए हैं। उनके अंग तेजी से जंगल में दौड़ रहे हैं तथा उन्होंने मरे ग्रीन को तीन दिशाओं से घेर लिया है। पता चला कि उन्होंने पहले ही मरे ग्रीन को घेर लिया था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि घेरा कम होने से पहले ही मरे ग्रीन ने एक कोना खोल दिया था। बैंग! अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से मरे ग्रीन को केवल निशाना लगाने और ट्रिगर खींचने की जरूरत थी और दहाड़ के बीच एक और रक्षक भेड़िया गिर गया। मरे ग्रीन ने पुनः गोलियां चलाईं, लेकिन इससे पहले कि वह तीसरे भेड़िए को मारने के लिए गोली चला पाता, एक शानदार भेड़िए की आवाज सुनाई दी और शेष दो भेड़ियों ने तुरंत दिशा बदल ली और भागने का फैसला किया। कायास पर्वत पर सबसे बड़ी मांसाहारी पशु जनजाति के रूप में भेड़ियों के झुंड में आश्चर्यजनक प्रजनन क्षमता है। भेड़ियों के कुछ जोड़े पहाड़ में फेंक दें और अगले साल तक एक बड़ा समूह होगा। केवल वे भेड़िए ही जीवित बचे जो अपनी जगह जानते थे, जिन्हें अक्सर शिक्षकों और छात्रों द्वारा सबक सिखाया जाता था। इसलिए जब अल्फा भेड़िए को पता चला कि मरे ग्रीन एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था, तो उसने तुरंत तेजी से पीछे हटने का संदेश भेजा। बचे हुए दो जंगली भेड़ियों को दुम दबाकर भागते देख मरे ग्रीन को कुछ निराशा हुई कि वह बंदूक और खुद की सीमाओं का परीक्षण नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उसने पीछे हटते हुए भेड़ियों की ओर बंदूक तान दी। मरे ग्रीन खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था, वह पहले सिर्फ अपनी युद्ध क्षमता का परीक्षण कर रहा था और वे उसके प्रति आक्रामक थे। अब भागते हुए भेड़ियों को मारना सिर्फ एक अर्थहीन वध होगा। साधारण जानवर अब आपके लिए कोई चुनौती नहीं है। क्यों ना हम लेवल एक का जादुई जानवर ढूंढें और आपको अपना हाथ आजमाने दें। राइन ग्रीन मरे ग्रीन के पास आए और उन्होंने ये सुझाव दिया। ये सुनकर मरे ग्रीन की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत सहमत हो गए। राइन ग्रीन के नेतृत्व में दोनों कायास पर्वत की गहराई में चले गए। गहराई में पेड़ ऊंचे हो गए और पहाड़ी रास्ता और भी ऊबड़ खाबड़ हो गया। अचानक एक विशाल 2 मीटर लंबी बकरी एक चट्टान से नीचे कूद गई और उसके साथ साथ दौड़ने लगी। एक स्तर एक जादुई जानवर, एक लोहे के खुर वाला बकरा। जैसे ही मरे ग्रीन ने बकरी को देखा, उसके दिमाग में उसका नाम उभर आया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, चमड़े के कवच में लिपटा एक युवक एक हाथ में तलवार लिए लोहे के खुर वाले बकरे का पीछा करने लगा। हालांकि लौह खुर वाला बकरा खड़ी चट्टानों पर बड़ा हुआ था और उन पर ऐसे चल रहा था जैसे कि वह समतल जमीन पर चल रहा हो। पीछे वाला युवक न केवल दूरी कम करने में विफल रहा बल्कि और भी पीछे रह गया। मी पीछे देखे बिना, लेकिन जैसे कि उसे पता हो कि उसके पीछे वाला युवक उसे पकड़ नहीं पाएगा, लोहे के खुर वाला बकरा मजाक में मिमियाने लगा। बकरी की चीख सुनकर पीछे वाला युवक खुद को कोसने से नहीं रोक सका, फिर भी वह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि वह और भी पीछे छूटता जा रहा था। लोहे के खुर वाला बकरा चट्टान पर सरपट दौड़ रहा था, तभी अचानक जंगल से एक तीर निकला और लोहे के खुर वाले बकरे के पार्श्व भाग में जा लगा। दर्द से कराहते हुए लोहे के खुर वाले बकरे का पैर फिसला और वह चट्टान से नीचे गिर गया। एक लेवल एक जादुई जानवर के रूप में भी घायल होने के बाद चट्टान से गिरने से वह बुरी तरह घायल हो गया। मैं लोहे के खुर वाले बकरे ने चारों पैरों पर खड़े होकर खड़े होने की कोशिश की, तभी एक कमजोर दहाड़ गूंजी। लेकिन तभी भारी कवच पहने एक योद्धा दो हाथों वाली बड़ी तलवार लेकर पास की घास से कूदा और एक झटके में लोहे के खुर वाले बकरे का सिर काट दिया। बकरी का खून बिखरा हुआ था, लेकिन योद्धा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें मरे ग्रीन और दूसरे व्यक्ति की दिशा पर टिकी थी, जैसे कि वह सतर्क हो। चल दर, राइन ग्रीन, जिसने पूरी शिकार प्रक्रिया देखी थी, मुड़कर चला गया। मरे ग्रीन उसके पीछे पीछे चला गया, कभी कभी पीछे मुड़कर देखता रहा। उसने देखा कि युवक योद्धा के पास दौड़कर गया और उससे बातचीत की। कुछ ही देर बाद एक लंबी युवती, जिसके पास छोटा धनुष था, जंगल से निकली और तीनों ने मिलकर युद्ध में मिली अपनी लूट का माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि वे तीनों अत्यंत सतर्क होकर अपने स्थान की ओर देखते रहे। लोहे के खुर वाले बकरे के खुरों का इस्तेमाल जादुई औषधि को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। वे ऐसे छात्र होने चाहिए जिन्होंने सभा की खोज स्वीकार की हो, दूसरे वर्ष के औसत ताकत के साथ। सामने बैठे राइन ग्रीन ने पुनः कमेंटेटर की भूमिका निभानी शुरू की तथा मरे ग्रीन को स्थिति समझाई, जिन्होंने फिर अपने मन में उठे प्रश्न को उनसे पूछा। पहाड़ में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक छात्र है, वे हमसे इतने सावधान क्यों हैं? उन्हें डर है कि हम कुछ कर सकते हैं। क्या कोई वास्तव में पहाड़ में किसी और की लूट को चुरा सकता है? क्यों नहीं, अगर किसी और के द्वारा घायल किया गया शिकार मेरी शिकार सीमा में भागता है और मैं उसे मार देता हूं, तो वह किसका शिकार होगा? दोनों में से आधा आधा। या अगर मैं उनका शिकार चाहता हूं, तो यह अनुचित हो सकता है, लेकिन मेरी ताकत उनसे ज्यादा है। मैं बस उसे छीन कर भाग सकता हूँ या बस उन्हें मारकर भगा सकता हूँ। वे मेरा क्या कर सकते हैं? शिक्षक ढूंढना असंभव। पहाड़ पर चढ़ने के बाद शिक्षक केवल छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जहां तक उनके लाभ और शिकार का सवाल है, क्या शिक्षक न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है? निष्पक्षता निर्धारित करने के लिए। इस दुनिया में यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो कई समस्याएं समस्याएं नहीं रह जाती। कयास माउंटेन एलिस अकादमी द्वारा स्थापित एक शिकारगाह है जो केवल छात्रों और जादुई जानवरों के लिए है। आप कैसे पहचानते हैं कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है? इस बिंदु पर रायन ग्रीन ने गंभीर रूप से मुस्कुराते हुए मरे ग्रीन को घूरा। मरे ग्रीन अपने बड़े भाई के ऐसे अपरिचित पक्ष का सामना कर रहा था। उसे भी अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। वास्तव में ये पहचानना बहुत आसान है। जो ताकतवर है वही शिकारी है। लोहे के खुर वाला बकरा उनके सामने शिकार है, तो वे मेरे सामने शिकार क्यों नहीं हो सकते? कयास माउंटेन में हर कोई अपने अपने तरीकों पर निर्भर करता है। अकादमी ने कयास माउंटेन की स्थापना इसलिए की है ताकि छात्रों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक जगह मिल सके। जब तक कोई कयास माउंटेन के साथ तालमेल बिठा सकता है, तब तक वह चाहे कहीं भी जाए वह बुरा नहीं होगा। मरे ग्रीन ने अपने बड़े भाई की शिक्षा को स्वीकार करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और साथ ही इस बात पर अफसोस भी जताया कि ये दुनिया वास्तव में बहुत सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी ऐसी क्रूर चीजों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कयास माउंटेन में होने वाली घटनाओं से स्कूल के आंतरिक वातावरण पर असर पड़ने से रोकने के लिए माउंटेन नियमों में एक विनियमन है, पहाड़ में जो होता है वह पहाड़ में ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पहाड़ में रायन ग्रीन द्वारा उनका शिकार चुरा लिया गया हो लेकिन वे उसे वापस नहीं पा सके, तो पहाड़ छोड़ने के बाद रायन ग्रीन से बदला लेने के लिए यदि बाद में वे पकड़े गए तो यह वैध बचाव नहीं होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रायन ग्रीन ने मरे ग्रीन को कई अनुभव समझाए, लेकिन इसका मूल ये था कि शक्ति ही सर्वोच्च है। जब तक कोई पर्याप्त रूप से मजबूत है तो कहीं भी स्वर्ग है। काफी देर बाद रायन ग्रीन रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह एक तरफ देखने लगा। ये देखकर मरे ग्रीन ने भी अपनी नजर उधर घुमाई। उसकी दृष्टि जंगल की घनी शाखाओं को चीरती हुई उनके पीछे एक गुफा को देख रही थी। इस गुफा को देखकर मरे ग्रीन को अपने पिछले शिकार के ज्ञान की याद आ गई और उसने अनुमान लगाया कि यह एक भालू का अड्डा है।
फिर उन्होंने गुफा के आसपास के क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि वहां कई नई टूटी हुई शाखाएं थीं तथा प्रवेश द्वार पर घास अन्य स्थानों की तुलना में बहुत कम थी।
अंदर एक भालू रहता था। मरे ग्रीन ने रायन ग्रीन की ओर देखा, लेकिन देखा कि वह कंधे उचकाकर और सिर झुकाकर मरे ग्रीन को संकेत दे रहा था कि वह खुद ही स्थिति संभाल ले। अपने बड़े भाई को शो देखने की तैयारी करते देख मरे ग्रीन ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर नीचे किया, पास में एक मुट्ठी भर पत्थर उठाया और हिम्मत जुटाते हुए उसे भालू की मांद में फेंक दिया जो 2 मीटर से अधिक ऊंची थी। डोंग! पत्थर के जमीन पर टकराने की तीखी आवाज गूंजी और मरे ग्रीन तेजी से भालू की मांद से दूर चले गए। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गुफा के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। मरे ग्रीन को पता चल गया कि मांद में मौजूद भालू शिकार करने गया है। भालू का इंतजार मांद में करें या सक्रिय रूप से तलाश करें, यही सवाल था। मरे ग्रीन थोड़ा उलझन में था। उसके जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए जादुई जानवर के साथ सक्रिय रूप से परेशानी की तलाश करना कुछ हद तक जोखिम भरा था, लेकिन यहां इंतजार करना समय की बर्बादी होगी। मरे ग्रीन ने अपना सिर खुजलाया और पुनः रायन ग्रीन की ओर देखा, लेकिन वहां खड़ी बड़ी आकृति अचानक गायब हो गई थी। इससे मरे ग्रीन और भी अधिक उत्तेजित हो गया। वह बेचैनी से चक्कर लगाता रहा। उसकी नजरें भालू की मांद के आसपास के क्षेत्र पर टिकी थी। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि भालू कहाँ गया। मरे ग्रीन ने अपनी मजबूत मानसिक शक्ति से कुछ विवरणों पर ध्यान दिया और भालू की दिशा का अनुमान लगाया। उसने अपना पैर उठाया और उसका पीछा करने का इरादा किया, लेकिन तभी मरे ग्रीन ने अचानक एक गहरी सांस ली, अपने दिल में आवेग को दबाया, पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, एक शाखा पर बैठ गया, तने से टिक गया और संकुचित आंखों से अपने आसपास का निरीक्षण किया। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिक शक्तिशाली बनने का निर्णय लिया और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उन्होंने आग्नेयास्त्रों पर शोध किया और आग्नेयास्त्रों का परीक्षण करने के लिए उन्होंने स्वयं को खतरे में डाल दिया। भले ही मरे ग्रीन को पता था कि उसका बड़ा भाई रायन ग्रीन पास में ही है और अगर वह खतरे में पड़ गया तो उसे बचा लेगा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ढहती हुई दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता। कुछ चीजों को आत्मविश्वास के साथ भी जानबूझकर नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस बार रायन ग्रीन के साथ होने के कारण वह बहुत ज्यादा खतरे में नहीं होगा, लेकिन अगली बार क्या होगा, तब उसका साथ कौन देगा? इसलिए इस शिकार के लिए रायन ग्रीन के साथ होने के बावजूद उसे ऐसा व्यवहार करना था मानो वह अकेला हो, तभी वह अपनी इष्टतम स्थिति में पहुंच सकता था। सांस छोड़ें, सांस लें। जैसे ही मरे ग्रीन ने अपनी सांसों की गति धीमी की, हर सांस लंबी और खींची हुई होती गई। उसकी सांसों के प्रभाव में उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसकी आंखें सभी दिशाओं को स्कैन कर रही थीं और उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। अज्ञात समय के बाद मरे ग्रीन ने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई भारी वस्तु जमीन पर गिरी हो। उसके बाद घास और शाखाओं में हल्की सी सरसराहट हुई। मरे ग्रीन की आंखें चमक उठी। बाज की तरह वह ध्वनि के स्रोत को घूरने लगा। उसने देखा कि झाड़ियां धीरे धीरे हिल रही थीं और अधिक हिंसक होती जा रही थीं। आखिरकार मुंह में हिरन लिए एक काला भालू अपना सिर बाहर निकालता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मरे ग्रीन ने उसकी छाती पर चांदी के बाल देखे। चांदी के बालों वाला काला भालू। मरे ग्रीन का दिल तेजी से धड़क उठा जब उन्होंने इसकी पहचान की और उन्होंने तुरंत इसके स्वरूप पर ध्यान दिया। इसकी छाती पर चांदी के रंग का फर था और कंधे पर इसकी ऊंचाई 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। अगर यह सीधा खड़ा होता तो इसकी लंबाई 3 मीटर होती। यह एक बहुत बड़ा जीव था। लेकिन यह एहसास होने पर मरे ग्रीन ने राहत की सांस ली। सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर एक लेवल 1 जादुई जानवर है, लेकिन उनमें से ज्यादा असाधारण व्यक्ति लेवल 2 जादुई जानवर बन सकते हैं। हालांकि लेवल 2 सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर 5 मीटर लंबा होता है और उसकी छाती पर चांदी का फर उसके पेट तक फैला होता है। सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर का सिल्वर फर सख्त और मुलायम दोनों होता है, जो इसे टाइट फिटिंग सुरक्षात्मक गियर के लिए एक बेहतरीन सामग्री बनाता है। यहां तक कि लेवल 1 लॉन्गस्वॉर्ड या जादुई जानवर के तीखे पंजे भी इसे भेदने में मुश्किल होंगे। हालांकि जब ये सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर के शरीर पर होता है तो ये सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर की एक घातक कमजोरी को सीधे खत्म कर देता है। कुछ शक्तिशाली जादू के अलावा कुछ अन्य हमले चांदी के फर की सुरक्षा को बलपूर्वक तोड़कर उसके दिल पर प्रहार कर सकते हैं। ये देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना परेशान करने वाला था, मरे ग्रीन ने बंदूक के हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसे ढीला किया, फिर उसे पुनः मजबूत किया, सीधे अपनी बंदूक निकाली और अपनी आंखें चांदी के बालों वाले काले भालू के सिर पर टिका दी। बैंग! कयास पर्वत के जंगल में गोली की आवाज गूंजी, लेकिन मरे ग्रीन के चेहरे पर अचानक हुए हमले के कारण उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चुक होना! सीटी बजाती गोली सिल्वर बालों वाले काले भालू के कान के पास से निकल गई। ऐसा नहीं था कि मरे ग्रीन ने निशाना नहीं लगाया था, लेकिन सिल्वर बालों वाले काले भालू ने अपनी शक्ल के हिसाब से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने गोली चलाते ही अपना सिर हिलाकर गोली को चकमा दे दिया। ओह! चांदी के बालों वाले काले भालू ने उसकी मांद के प्रवेश द्वार पर हमला किया, उसके मुंह में रखा भोजन गिरा दिया, अपने अगले पंजे जमीन से ऊपर उठा लिए, खड़ा हो गया, अपना रक्त लाल मुंह खोला और मरे ग्रीन पर उग्रता से दहाड़ने लगा, फिर अपने पंजे जमीन पर पटक दिए, जिसके शक्तिशाली बल से एक छोटा गड्ढा बन गया। सिल्वर बालों वाले काले भालू ने अपने चारों हाथ पैरों से मरे ग्रीन की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। उसका विशाल शरीर एक पूरी तरह से भरे हुए ट्रक की तरह था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए मरे ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक और गोली लोड की और सिल्वर बालों वाले काले भालू पर निशाना साधा। योद्धाओं के पास अंतर्ज्ञान होता है, जादूगरों के पास धारणा होती है और जादुई जानवरों के पास सहज बोध होता है। हालांकि पूरी तरह से अलग अलग, ये तीनों रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, अवसरों को पहले से देखने और खतरे को भांपने की क्षमता। यही कारण था कि चांदी के बालों वाला काला भालू मरे ग्रीन के छुपे हमले से बचने में सफल रहा। खतरे को भांपते हुए चांदी के बालों वाले काले भालू ने अपना शरीर घुमाया। अब वह सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि अनियमित रूप से मरे ग्रीन के पास पहुंच रहा था। कभी कभी पेड़ों के पीछे चक्कर लगाता था, जिससे उसे लगने वाले खतरे से बचने की कोशिश हो रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए मरे ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया, फिर एक दर्द भरी चीख के साथ गोली को फिर से लोड किया, अपनी बंदूक उठाई और चांदी के बालों वाले काले भालू को देखा। उसकी पीठ पर एक छोटा सा खूनी गड्ढा बन गया। उसके शक्तिशाली शरीर के लिए ये घातक तो नहीं था, लेकिन बहुत दर्दनाक था। घायल चांदी के बालों वाले काले भालू की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। हालांकि उसकी दहाड़ के साथ ही एक तेज आवाज भी निकली और उसके सामने के कंधे से खून की धार फूट पड़ी। दो बार चोट लगने से दर्द के कारण सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर का गुस्सा आसमान छूने लगा और उसकी हरकतें फिर से तेज हो गईं। लेकिन तभी उसे अचानक लगा कि कोई जानलेवा खतरा उसके करीब आ रहा है और उसने सहज रूप से अपना सिर हिलाकर बचने की कोशिश की। हालांकि उसके पहले से घायल सामने के कंधे पर फिर से चोट लगी और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से डूब गया, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर गया। सुंदर! मरे ग्रीन ने एक और गोली भरी, बंदूक के हैंडल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए सिल्वर बालों वाले काले भालू के सिर पर निशाना साधा। जैसे ही उसने गोली चलाई, बंदूक की नली धीरे से खिसक गई और तीसरी गोली सिल्वर बालों वाले काले भालू के सामने के कंधे पर लगी। खून ने काले भालू के कंधे को लाल रंग में रंग दिया और खून की बड़ी धारें उसके फर से होकर जमीन पर बहने लगी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर की सहन शक्ति भी तेजी से कम होने लगी। 3 गोलियां लगने से उसका अगला कंधा सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसका एक अगला पंजा बेकार हो गया। केवल 2 पैरों और 1 पंजे का उपयोग करने के लिए मजबूर होने के कारण उसकी गति में काफी गिरावट आई, जिससे उसकी सारी चपलता खत्म हो गई। क्लिक करें। एक गोली चैम्बर में लगी थी। बैंग, गोली चल गई। चांदी के बालों वाले काले भालू ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब वह फुर्तीला नहीं रहा। वह बहुत धीमा था और उसे सीधे पीठ के निचले हिस्से में गोली लगी। गोली उसके मांस को चीरती हुई उसके शरीर के अंदर घुस गई और उसके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा। चांदी के बालों वाले काले भालू के पैर लड़खड़ा गए और वह लगभग मौके पर ही गिर पड़ा। यद्यपि यह रुका नहीं, परंतु इसकी आगे की गति पहले ही आधे से अधिक कम हो चुकी थी और अभी भी धीमी हो रही थी तथा किसी भी समय रुक सकती थी। ओ बैंग, चांदी के बालों वाला काला भालू मानो अपनी बुद्धि के अंत में अचानक आगे की ओर झपटा ताकि मरे ग्रीन के घातक शॉट से बच सके जो उसके सिर पर लक्षित था। हालांकि वह इस शॉट से बच गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह कुछ समय तक हिलने डुलने में असमर्थ था, केवल जमीन पर पड़ा हुआ जोर जोर से हौंफ रहा था। उसके मुंह से आंतरिक चोटों से खून बह रहा था। मरे ग्रीन ने सांस छोड़ी, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने सिल्वर बालों वाले काले भालू के सिर पर निशाना साधा। उसने एक तेज सांस ली और उसके कांपते हाथ स्टील की तरह स्थिर हो गए। उसकी उंगली ने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच दिया। जानलेवा खतरे को भांपते हुए उसने सहज रूप से अपना सिर झुका लिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने और बहुत सारा खून बह जाने के कारण सिल्वर हेयर ब्लैक बियर की हरकतें बहुत धीमी थीं। गोली सीटी बजाती हुई उसकी आंख में घुसी और उसके सिर के किनारे से निकल गई। ओह, क्या उपद्रव मचा रखा है। ये देखकर कि प्रतिद्वंद्वी अभी भी मरा नहीं है, मरे ग्रीन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और आह भरी। यद्यपि उनका शरीर बंदूक की मार झेल सकता था, लेकिन अल्प अवधि में लगातार गोलीबारी तथा अपने शरीर को सूक्ष्मता से समायोजित करने के लिए मानसिक शक्ति के व्यापक प्रयोग के कारण मरे ग्रीन के हाथ कांपने लगे तथा सिर में चक्कर आने लगा। अपनी आंखें बंद करके उसने कुशलता से गोली फिर से लोड की, दोनों हाथों से बंदूक के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। मरे ग्रीन ने तुरंत अपनी आंखें खोली, उनमें एक तेज चमक थी। उसने सिल्वर बालों वाले ब्लैक बियर के सिर पर बंदूक का निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। बैंग, ये गोली मरे ग्रीन द्वारा अपनी अंतिम मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए चलाई गई थी, जो वायु प्रतिरोध को चीरती हुई सीधे स्थिर चांदी के बालों वाले काले भालू की ओर बढ़ी और सीधे उसके माथे पर जा लगी। अपनी भुजाओं को स्वाभाविक रूप से लटकाए, कभी कभी हिलाते हुए, मरे ग्रीन एक पेड़ के तने से टिके हुए थे, भारी सांस ले रहे थे। उनके माथे पर पसीना था और उनकी आंखें कसकर बंद थी। वे कम समय में बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने से उत्पन्न दर्द से लड़ रहे थे। हम राक्षस तो राक्षस ही होते हैं, वे आम जानवरों से पूरी तरह अलग होते हैं। अगर मैंने गुफा के प्रवेश द्वार पर घात लगाकर हमला नहीं किया होता और उसे अचानक पकड़ नहीं लिया होता, और अगर मैंने दूर से हमला नहीं किया होता, जो कि चांदी के बालों वाले काले भालू जैसे धीमी गति से चलने वाले राक्षसों के खिलाफ काफी प्रभावी है, तो एक साधारण हैंडगन के साथ अकेले राक्षस का सामना करना बहुत जोखिम भरा होता। मुझे लगातार सुधार करते रहना होगा। सबसे पहले मैं एक रिपीटिंग गन खरीदूंगा और फिर उसके आधार पर मैं एक रिवॉल्वर बनाऊंगा। 6 शॉट, अगर पूरा ड्रम भर जाने के बाद भी प्रतिद्वंद्वी नहीं मरा तो मैं मर ही जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि आग्नेयास्त्रों को संशोधित करने के लिए कौन से जादुई तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद मरे ग्रीन स्वस्थ हो गए और पेड़ से उतरकर अपनी ट्रॉफी के पास पहुंचे। सामने लेटे चांदी के बालों वाले काले भालू को देखकर उनके दिल में संतुष्टि की भावना उमड़ पड़ी। ये लेवल एक राक्षस सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर हथियारों से लैस एक दर्जन साधारण लोगों को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति, अच्छा एक कुछ हद तक शक्तिशाली साधारण व्यक्ति ने अकेले ही अपने द्वारा बनाए गए हथियार से उसे मार डाला। मरे ग्रीन कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। मरे ग्रीन ने उत्साह से चांदी के बालों वाले काले भालू का 2 बार चक्कर लगाया, फिर एक भालू का पंजा उठाया और पाया कि यह उसके अपने सिर से भी बड़ा था। एक भालू का पंजा उसे 2 दिनों तक खाना खिला सकता था। उसने इसके चांदी के फर का भी अनुमान लगाया। इसे एक तंग फिटिंग अंडरगारमेंट में बुना जा सकता है, जो आरामदायक और टिकाऊ दोनों है। लेकिन तभी एक अपरिचित आवाज आई, बच्चे हिलना मत, मेरे चांदी के बालों वाले काले भालू को मत छुओ। एक लंबा आदमी दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था और उसके बगल में एक साथी एक लंबा धनुष पकड़े खड़ा था। लंबे आदमी की आवाज सुनकर मरे ग्रीन के चेहरे पर ठंडक छा गई और वह दोनों बिन बुलाए मेहमानों को घूरने लगा। मरे ग्रीन ने तुरंत अपनी 2 बंदूकें निकाली, एक हाथ में मैजिक क्रिस्टल गन और दूसरे हाथ में एक साधारण बंदूक, और उन दोनों व्यक्तियों पर तान दी। जो कोई भी एक कदम आगे बढ़ेगा मैं उसके माथे में एक और छेद कर दूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि आपके माथे चांदी के बालों वाले काले भालू के माथे से अधिक कठोर हैं। ओह बच्चे, तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम मुझे मार सकते हो। हम भाई उस भालू की तरह नहीं हैं, जो सिर्फ गोली खाने के लिए वहां खड़े हैं। दोनों आदमी स्थिर खड़े थे, उनकी आंखें बड़ी हो गई थी, वे मरे ग्रीन को घूर रहे थे। एक ने अपने पैर थोड़े मोड़े हुए थे और शरीर आगे की ओर झुका हुआ था, जबकि दूसरे ने अपना धनुष खींचा और तीर की नोक लगाई, जो सीधे मरे ग्रीन की ओर इशारा कर रहा था, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार दिख रहा था। मरे ग्रीन ने पलक तक नहीं झपकाए, उनकी नजरें उन दोनों पर टिकी रहीं और स्थिति तुरंत गतिरोध में बदल गई। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक ही गोली मार दूं तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही आप मरे नहीं। और क्या आपको लगता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति बिना किसी सहारे के बिना किसी साथी के कायास पर्वत में प्रवेश करने की हिम्मत कर सकता हूँ? हम्फ, तुम प्रथम वर्ष के नए छात्र हो, है ना? तुम में कायास पर्वत की गहराई में आने की हिम्मत है, लेकिन तुम तो बस दो जादुई क्रिस्टल बंदूकें पकड़े हुए हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम भाई तुमसे डरते हैं? दो कुल्हाड़ियां लिए हुए आदमी ने घृणा से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। बात बस इतनी है कि हम भाई कभी भी कमजोर लोगों को परेशान नहीं करते, इससे हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। जब तक वे गायब नहीं हो गए, तब तक उनकी पीछे हती हुई आकृतियों को देखते हुए मरे ग्रीन के हाथ अचानक गिर गए और वह चिल्लाते हुए हॉनफने लगा। राइन, तुम विश्वासघाती भाई, जल्दी करो और मेरी मदद करो। हाहा, तुमने अच्छा किया, मुझे लगा कि तुम मुझे सीधे बुलाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें अकेले ही डराकर भगा दोगे। राइन ग्रीन की हथेली से मरे ग्रीन का कंधा झटका खा गया और मरे ग्रीन को लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ गए हैं और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं इस समय कितना कमजोर हूँ? मेरा सिर लगभग धड़क रहा है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो तो तुम मुझे जमीन पर क्यों धकेल रहे हो?
मरे ग्रीन ने शिकायत की, लेकिन राइन ग्रीन बिना किसी चिंता के बस मुस्कुराए और चांदी के बालों वाले काले भालू की लाश को देखते हुए बोले,
आपकी मानसिक शक्ति वास्तव में मजबूत है और आपकी आध्यात्मिक शरीर पर कब्जा करने की विधि काफी कुशल है। अन्यथा भले ही यह काला भालू अपेक्षाकृत धीमा हो, एक साधारण व्यक्ति के लिए इसे मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। हे, तुम ये भी नहीं देखते कि मैं कौन हूँ? मेरे हाथों मरना इसका सम्मान है, मरे ग्रीन के। हम, मैं गायों को आकाश में उड़ते हुए कैसे देख सकता हूँ? राइन ग्रीन ने अचानक ऊपर देखा, जिससे मरे ग्रीन को लगा कि उसने कुछ खोज लिया है, लेकिन तभी उसने राइन ग्रीन के चिढ़ाने वाले शब्द सुने, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। कुछ देर तक मजाक करने के बाद मरे ग्रीन की थकान थोड़ी कम हुई, फिर वह काले भालू पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ध्यान विधि का पाठ किया, अपनी मानसिक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर दो बार प्रसारित किया, मानसिक शक्ति का उपयोग करके कुछ गतिशीलता बहाल की। खड़े होकर मरे ग्रीन ने अपने दुखते सिर को थपथपाया और मुंह बनाते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मानसिक ऊर्जा कभी पर्याप्त क्यों नहीं होती? मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ। मरे ग्रीन की शिकायत सुनकर राइन ग्रीन अवाक रह गई। बस इतना ही काफी है, नए छात्र जिन्होंने आपके साथ ही पढ़ाई शुरू की है वे शायद अभी भी ध्यान विधि को याद कर रहे हैं, जबकि आप पहले से ही कायास पर्वत पर रोमांच का आनंद ले रहे हैं।
ये सब उसकी मानसिक शक्ति के कारण है जो उसके साथियों से कहीं अधिक है।
विभिन्न स्तरों पर स्तर एक के राक्षस को मारने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यदि इस उपलब्धि की घोषणा कर दी जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों को हैरान कर देगी। उन दो गुंडों ने, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि मरे ग्रीन भी एक प्रथम स्तर का योद्धा था, करीब से निरीक्षण करने पर पाया कि वह एक साधारण व्यक्ति था। ये पता चलने पर कि मरे ग्रीन एक साधारण व्यक्ति एक चांदी के बालों वाले काले भालू को मार सकता है, वे निश्चित नहीं थे कि उसके पास और कौन से भयानक तरीके हो सकते हैं, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मरे ग्रीन के पीछे एक विशेषज्ञ होना चाहिए, अन्यथा वे एक चांदी के बालों वाले काले भालू को इतनी निर्णायक रूप से क्यों छोड़ देते? चांदी के बालों वाले काले भालू के चांदी के फर, पंजे, दिल, पित्ताशय, खाल और हड्डियां सभी अच्छी चीजें हैं। स्तर एक राक्षसों में चांदी के बालों वाला काला भालू काफी मूल्यवान है।
आप इस भालू से निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं?
क्या आप इसे पहाड़ से नीचे नहीं ले जाएंगे? मरे ग्रीन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने राइन ग्रीन को देखा, जिन्होंने बदले में अपने कपड़ों से काल्पनिक धूल को झाड़ दिया और गर्व से कहा, एक साधारण चांदी के बालों वाला काला भालू, तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं इसे पहाड़ से बाहर ले जाऊं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई, स्तर 3 से नीचे किसी भी राक्षस को नहीं ले जाऊंगा? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं और जादू का विद्यार्थी भी, चाहकर भी मैं इसे नहीं उठा सकता। राइन ग्रीन ने कंधे उचका दिए, तो फिर इसे यहीं छोड़ दो। मरे ग्रीन ने इस उत्तर को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। ये पहला राक्षस था जिसे उसने मारा था और इसका बहुत बड़ा स्मारक महत्व था। भले ही वह अपने संग्रह कक्ष में प्रदर्शित करने के लिए इसका पूरा नमूना न बनाए, लेकिन वह निश्चित रूप से इसके फर और चांदी के फर को रखेगा। यदि वह केवल फर और चांदी के बाल ही वापस ले लेता तथा भालू के पंजे, हृदय, पित्ताशय और हड्डियों जैसे अन्य मूल्यवान भागों को छोड़ देता तो मरे ग्रीन ऐसा करने में अनिच्छुक होते। लेवल 1 का राक्षस कम से कम 10 सोने के सिक्कों में बिक सकता है। भले ही वह इस बेहद कीमती चांदी के बालों वाले काले भालू के सबसे कीमती चांदी के फर और खाल को अपने पास रख ले, फिर भी बाकी हिस्से 10 सोने के सिक्कों से ज्यादा में बिक सकते हैं।
तो मरे ग्रीन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे नहीं ले जाना चाहता और आप इसे नहीं ले जा सकते, इसलिए आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। राइन ग्रीन ने अपने हाथ फैलाए, जमानत के लिए तैयार। आखिरकार जब भी वह पहाड़ों में प्रवेश करता था तो उसका मुख्य लक्ष्य लेवल 3 जादुई जानवर होते थे। अगर उसे कोई नहीं मिलता तो वह लेवल 2 जानवर से ही संतुष्ट हो जाता। वह वास्तव में लेवल 1 जानवर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। राइन ग्रीन की बातें सुनकर मरे ग्रीन का सिर और भी दर्द करने लगा। वह दर्द कम करने के लिए सिर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। पैट पैट आह, सिर पर थपथपाने के बाद मरे ग्रीन को प्रेरणा की एक किरण सूझी। वह सीधे उस दिशा में देखने लगा जिस ओर वे दोनों व्यक्ति गए थे। कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। बुरे लोगों को अपने बुरे लोगों से निपटना पड़ता है। मरे ग्रीन ने अपना सिर घुमाया और राइन ग्रीन की ओर देखा। यह सबसे बड़ी बुराई थी, इसलिए उसने एक उपाय सुझाया। यह उपाय सुनकर राइन ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया, अपनी मांसपेशियों को खींचा और अपनी बड़ी तलवार को पकड़कर उस दिशा में उन दो आदमियों का पीछा किया जिस दिशा में वे गए थे।
कुछ ही देर बाद आत्मविश्वास से लबरेज राइन ग्रीन वापस लौटी। उनके पीछे 2 हताश खिलाड़ी भी थे।
ये वही 2 लोग थे जो मरे ग्रीन से उसका शिकार लूटना चाहते थे।
बड़े भाई, अद्भुत! मरे ग्रीन ने अंगूठा दिखाया और राइन ग्रीन ये देखकर समझ नहीं पाई कि हंसे या रोए।
ये 2 काया हैं, मैंने कुछ भी करने से पहले ही उन्होंने हार मान ली। राइन ग्रीन की बातें सुनकर दोनों व्यक्तियों ने अस्वाभाविक रूप से अपने मुंह हिलाए, लेकिन जल्दी ही भावशून्य हो गए।
2 मजबूत मजदूरों की मदद से 3 मीटर लंबे, लगभग 1 टन वजनी चांदी के बालों वाले काले भालू को कायास पर्वत से बाहर निकाला गया और वापस प्रवेश द्वार पर लाया गया। कायास माउंटेन पर बहुत से छात्र आते थे, कुछ खोजबीन के लिए, कुछ शिकार करने के लिए, कुछ स्टॉल पर सामान बेचने के लिए और कुछ सिर्फ मनोरंजन के लिए। लोग आते जाते रहते थे जिससे ये जगह काफी जीवंत हो जाती थी। जब गंभीर चेहरे वाले 2 व्यक्ति चांदी के बालों वाले काले भालू को पहाड़ से बाहर ले गए तो उन्होंने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। ओह, क्या ये चांदी के बालों वाला काला भालू है? चांदी के बालों वाले काले भालू के पास चाहे जितने भी चांदी के बाल हों, मैं सब खरीद लूंगा। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। रास्ते में किसी ने सीधे ही उन दोनों लोगों से इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा। जवाब में दोनों लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव के अलावा कोई भाव नहीं था, क्योंकि यह भालू उनका नहीं था, वे तो बस मजदूर थे जो इसे ढो रहे थे। इसलिए जितना ज्यादा वे इस भालू की तलाश में थे, उतना ही ज्यादा वे अंदर से दुखी महसूस कर रहे थे। हाहा, मुझे खेद है, इस चांदी के बालों वाले काले भालू का चांदी का फर बिक्री के लिए नहीं है। बेशक चांदी के फर और खाल और भालू के पंजे के अलावा बाकी सब कुछ बेचा जा सकता है, कीमत पर बातचीत की जा सकती है।
अपने भालू को इतना लोकप्रिय देखकर मरे ग्रीन, जो उन 2 व्यक्तियों के पीछे चल रहे थे, जोर से हंस पड़े और खरीदारी में रुचि दिखाने वाले आसपास के ग्राहकों का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया।
मरे ग्रीन का सामना करते हुए, जिस पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था और जो अचानक सामने आ गया, सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये देखने के बाद कि चांदी के बालों वाले काले भालू को ले जाने वाले 2 लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की, वे सभी कीमतों के बारे में पूछताछ करने लगे। खाली जगह पाकर दोनों व्यक्तियों ने चांदी के बालों वाले काले भालू की लाश को जमीन पर रख दिया और जो लोग उसे खरीदना चाहते थे या सिर्फ हंगामा देखना चाहते थे, उन्होंने तुरंत तीनों को घेर लिया।
सुंदर और तेज तर्रार वरिष्ठ भाइयों, सुंदर और आकर्षक वरिष्ठ बहनों, कृपया जल्दबाजी न करें। हमें इस चांदी के बालों वाले काले भालू को थोड़ा समझने के लिए एक क्षण दें। दोनों व्यक्ति अपने आसपास की जगहों को छानते हुए भारी सांस ले रहे थे तथा राइन ग्रीन का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कोई निशान नहीं मिला।
तभी मरे ग्रीन उन दोनों व्यक्तियों की ओर मुड़े और धीरे से कहा, कृपया आप दोनों को इस भालू के शव को हटाने में मेरी मदद करने का कष्ट दीजिए। मरे ग्रीन के मधुर शब्दों को सुनकर और उसकी चमकदार मुस्कान को देखकर जुड़वां कुल्हाड़ियों वाला आदमी कांप उठा, आह भरी और अपने साथी की बांह थपथपाते हुए व्यवस्था का पालन करने का संकेत दिया।
अफसोस, जब कोई दूसरे की छत के नीचे होता है तो उसे अपना सिर झुकाना पड़ता है।
उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे एक नर्म खुरमा को निचोड़ने के लिए उठाकर एक बड़ा लाभ उठा सकते हैं। नतीजतन न केवल उन्होंने नर्म खुरमा को निचोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उसके पीछे के मजबूत नट को उकसाया।
राइन ग्रीन, एक काउंट के उत्तराधिकारी, एक मध्यवर्ती योद्धा और योद्धा अकादमी में शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक।
जब राइन ग्रीन ने अचानक पीछे से उनका पीछा किया तो दोनों व्यक्तियों ने लगभग अपनी पैंट गीली कर दी थी, इसलिए राइन ग्रीन ने कोई कदम भी नहीं उठाया था कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मरे ग्रीन के निर्देशन में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी चलाते हुए बड़ी मेहनत से भालू के पंजे काट डाले। दूसरे ने अपनी कमर से एक हाथ वाली तलवार निकाली और चांदी के बालों वाले काले भालू की छाती से चांदी के फर को सावधानीपूर्वक निकाला, उसे पास के एक स्टॉल से खरीदे गए कागज के बैग में पैक किया और मरे ग्रीन को सौंप दिया। फिर एक हाथ की तलवार का उपयोग करके उसने सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर के फर को छील दिया। हालांकि मरे ग्रीन ने सिल्वर हेयर्ड ब्लैक बियर में कई छेद किए थे, लेकिन वे उसके विशाल आकार की तुलना में बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए भालू की खाल का पूरा टुकड़ा बरकरार था। हालांकि ये पूरा काला भालू का चमड़ा खून, बहुत सारी धूल, बिखरे हुए पत्ते और सभी तरह की गंदी चीजों से ढका हुआ था, जो बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन मरे ग्रीन ने खुशी खुशी इसे पैक कर दिया। हाहा, वरिष्ठ भाइयों और बहनों, प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। अब इस काले भालू के लिए जो भी आप खरीदना चाहते हैं, बस इन दोनों को बताएं। लेकिन ये कैश ऑन डिलीवरी है, मैं भुगतान लेता हूं और वे सामान सौंप देते हैं।
दोनों पुरुषों के दिल कांप उठे। उन्होंने सहज रूप से एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बसंत की हवा की तरह मुरे ग्रीन की ओर अविश्वास भरी निगाहों से देखा। कृपया इंसान बनो, कौन उन दोनों को मौत के घाट उतारेगा? कायास पर्वत से इतने भारी भालू को बाहर ले जाना बहुत थका देने वाला था, और अब उन्हें सामान भी बेचना था। क्या आप एक इंसान बनकर उन्हें एक पल के लिए सांस लेने का मौका दे सकते हैं? सारा लाभ आपके साथ 40% विभाजित किया जाएगा। जितना अधिक आप बेचेंगे, उतना ही अधिक आपको मिलेगा। तभी मरे ग्रीन ने अचानक उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर दोनों व्यक्ति, जिनके चेहरे उदास थे, तुरंत चौंक गए। उनकी आंखें चमक उठीं और वे सीधे मरे ग्रीन को देखने लगे। मरे ग्रीन ने हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्होंने गलत नहीं सुना है। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह को देखते हुए एक दूसरे को देखा। सहमति बनने के बाद दोनों ने मरे ग्रीन के साथ दिल खोलकर हंसे और आसपास के ग्राहकों का अभिवादन किया, जिन्होंने खरीदारी में रुचि दिखाई थी। आओ आओ सब लोग, तुम्हें क्या चाहिए? आह, तुम्हें भालू का पित चाहिए। इस भालू के पास केवल एक पित है, साधारण भालू का पित खजाना है, और यह एक वयस्क चांदी के बालों वाला काला भालू है। इसके भालू के पित की कीमत इतनी होगी। दो कुल्हाड़ियों वाले आदमी ने अपने बाएं हाथ की कुल्हाड़ी नीचे रख दी और उस ग्राहक की ओर पांच उंगलियां उठाई जो भालू का पित खरीदना चाहता था। ये कीमत देखकर ग्राहक की भौहें तन गईं।
ये कीमत केवल उच्च गुणवत्ता वाले भालू के पित के लिए है। आपके इस चांदी के बालों वाले काले भालू के घावों को देखकर लगता है कि उसके अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप इसे खोलकर भालू के पित को क्यों नहीं निकाल लेते? अगर गुणवत्ता अच्छी है तो ये कीमत पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है।
ठीक है, इसकी आंतें निकालो और भालू का पित निकालो, मरे ग्रीन ने फैसला किया। जुड़वा कुल्हाड़ियों वाले आदमी ने तुरंत दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और पेट चीर दिया। दूसरे आदमी ने चीरे के साथ अपनी लंबी तलवार घुसा दी, जिससे चांदी के बालों वाले काले भालू की आंतें फट गईं और उसके अंदरूनी अंग बाहर निकल आए।
देखिए, ये भालू पित पूरी तरह से बरकरार है और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। चाहे शराब बनाने के लिए हो या जादुई औषधि को परिष्कृत करने के लिए, इस कीमत पर इसे खरीदना एक बेहतरीन विकल्प है। ये निश्चित रूप से अपने मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान है।
क्लिक 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 क्लिक,
धातु के सिक्के लगातार सिक्कों के पस में गिर रहे थे, जो अंदर पहले से मौजूद सिक्कों से टकराकर एक तीखी आवाज पैदा कर रहे थे। मरे ग्रीन ने स्वर्गिक संगीत की तरह सुनते हुए बेहद प्रसन्नता से सुना। कुछ ही समय बाद कभी विशालकाय चांदी के बालों वाला काला भालू दृश्यमान गति से गायब हो गया। यहां तक कि उसके आंतरिक मल को भी जानवरों को भगाने वाले पाउडर बनाने के लिए बेच दिया गया। कुल 15 सोने के सिक्के और 48 चांदी के सिक्के, 40% 6 सोने के सिक्के और 19 चांदी के सिक्के हैं। यहां 6 सोने और 48 चांदी के सिक्के हैं। अतिरिक्त छुट्टे आपके लिए हैं। मरे ग्रीन ने अपने सिक्कों के पस से 9 सोने के सिक्के निकाले और पस उन दो लोगों को थमा दिया। पस खोलकर अंदर झांकते हुए दोनों लोगों ने बहुत खुश होकर कहा, यंग मास्टर मरे बहुत उदार हैं। हम बहुत प्रभावित हैं। हम वॉरियर अकादमी में दूसरे वर्ष के छात्र हैं। मेरा नाम निगेल एरोलैंड है और उनका नाम वाल्टर रेलिन है। अगर यंग मास्टर मरे को बाद में पहाड़ों में जाने पर मदद की जरूरत पड़ती है तो हम जब भी बुलाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, स्कूल का चौथा सप्ताह, सोमवार। निक ब्राउन उदास दिख रहे थे, अकेले ही ध्यान कक्षा में चले गए, अपने गद्दे पर एकाकी होकर बैठ गए और मरे ग्रीन के गद्दे को घूरने लगे। हम निक, क्या तुमने आज मरे को क्लास के लिए नहीं बुलाया? क्लास शुरू होने वाली है, वह आज देर से तो नहीं आएगा, है ना? तभी लिवी एलिस ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। अचानक उसने देखा कि वह गद्दी जिस पर मरे ग्रीन आमतौर पर बैठते थे खाली थी। कक्षा के 20 छात्रों में से 19 पहले ही आ चुके थे, केवल मरे ग्रीन ही बचे थे। इसलिए लिवी एलिस ने निक ब्राउन से पूछा, जो आमतौर पर मरे ग्रीन के साथ कक्षाओं में भाग लेता था, और सवाल सुनते ही निक ब्राउन का चेहरा उतर गया और उन्होंने उदास होकर कहा, अफसोस मरे अब इस कक्षा में नहीं आएंगे। क्या हुआ? निक ब्राउन की बातें सुनकर उनके आसपास के कई लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और जल्दी से पूछा। सबके सवालों का सामना करते हुए निक ब्राउन ने अपना सिर खुजाया और सीधे तौर पर कहा, मुरे की ध्यान विधि उन्नत अवस्था में पहुंच गई है और शिक्षक लिंडन ने उन्हें स्वतंत्र ध्यान के लिए ध्यान कक्ष में जाने की सिफारिश की है, इसलिए उन्हें अब इस कक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या? ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए, जिससे निक ब्राउन को काफी अच्छा महसूस हुआ। एक ही समय पर ध्यान कक्ष के बाहर मरे ग्रीन ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक के पास पंजीकरण करवा रहे थे। अपना आवेदन पूरा करने के बाद मरे ग्रीन ने एक खाली ध्यान कक्ष चुना। ध्यान कक्ष के मध्य में कुशन पर पैर मोड़कर बैठे हुए मरे ग्रीन ने आज सुबह की घटना याद की। जब उन्होंने निक ब्राउन को बताया कि वे स्वतंत्र ध्यान के लिए ध्यान कक्ष में जा रहे हैं, तो निक ब्राउन की अविश्वास भरी अभिव्यक्ति बहुत मनोरंजक थी। चुपचाप मुस्कुराते हुए मरे ग्रीन ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वह ध्यान के लिए इष्टतम स्थिति में आ गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने ठंडे फर्श को छुआ। मूल रूप से खाली ध्यान कक्ष के फर्श पर जादुई सरणी पैटर्न की लड़ियां दिखाई दी, जो उसके चारों ओर थीं और लगातार बाहर की ओर बह रही थीं। जल्द ही पूरे ध्यान कक्ष में जादुई सरणी पैटर्न जगमगा उठे। गहरी सांस लेते हुए मरे ग्रीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसकी भौतिक आंखें बंद हो गईं, तो उसके शरीर के भीतर से उसकी आंतरिक दृष्टि खुल गई। मरे ग्रीन ने अपने मानसिक स्थान को देखा, जो अभी भी धुंधला और अस्पष्ट था। लेकिन चावल एक बार में एक ही कटोरा खाना चाहिए और खेती चरणबद्ध तरीके से करनी चाहिए। अभी इसकी तुलना काले और सफेद से नहीं की जा सकती, लेकिन एक दिन यह मूल पेंटिंग के सामने खुल सकेगी। ध्यान विधि का मौन जप करने से मूलतः शांत मानसिक सागर में उतार चढ़ाव आने लगा। मानसिक शक्ति का एक ज्वार मानसिक सागर से निकलकर परिसंचरण में प्रवेश कर गया। तभी इस मानसिक शक्ति ने उसके शरीर के भीतर एक जल गुण वाले जादुई कण का सामना किया। इस जादुई कण को देखकर मरे ग्रीन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके जादुई कण को अपने शरीर में लपेट लिया और अंत में इस जादुई कण को अपने शरीर में घुमाते हुए चक्र पूरा किया। विशाल मानसिक शक्ति मानसिक सागर में लौट आए और यह जल गुण जादुई कण भी मानसिक स्थान में लाया गया, जो उसके भीतर विचरण कर रहा था। इस जादुई कण को देखकर मरे ग्रीन बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें अपने पहले प्रयास में ही इतने अच्छे भाग्य की उम्मीद नहीं थी। उन्हें ध्यान की शुरुआत में ही जादुई कण प्राप्त हो गया। जादुई कण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा करते हैं, दुनिया की सभी चीजों में मौजूद होते हैं। इसलिए जादुई कण मानव शरीर के भीतर भी मौजूद हो सकते हैं, उन्हें ढूंढना सिर्फ किस्मत की बात है। आखिरकार मरे ग्रीन ने जो ध्यान विधि सीखी थी, उसके पहले खंड में केवल 3 परिसंचरण रेखाएं थीं और इन 3 परिसंचरण मार्गों पर जादुई कणों के मिलने की संभावना को अत्यंत सूक्ष्म कहा जा सकता है। मरे ग्रीन, जो शुरुआत में भाग्यशाली थे, ने जादुई कण को घूरते हुए प्रार्थना की कि यह इस दौरान उनके मानसिक स्थान से बाहर न उड़ जाए। साथ ही उन्होंने अपनी परिसंचरण गति को भी तेज कर दिया। जल्द ही तीसरा परिसंचरण पूरा हो गया और मानसिक सागर धीरे धीरे घूमने लगा। मानसिक सागर के घूर्णन से निर्मित मानसिक ऊर्जा क्षेत्र ने संपूर्ण मानसिक स्थान को घेर लिया और जलगुण जादुई कण, जो मरे ग्रीन के मानसिक स्थान में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लिया गया। जादुई कण, जो पहले एक चंचल पिल्ले की तरह था, अब पट्टे से बंधे कुत्ते की तरह था। उसकी गतिविधियां बहुत सीमित थीं, वह केवल मानसिक सागर का अनुसरण करते हुए अंतरिक्ष में ही घूम सकता था। अपने मानसिक ऊर्जा क्षेत्र के साथ इस जादुई कण को नियंत्रित करने के बाद मरे ग्रीन ने अंततः राहत की सांस ली, फिर जादुई कण के साथ संपर्क बनाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को लगातार सक्रिय किया। जैसे ही दोनों के बीच संपर्क हुआ, मरे ग्रीन को महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति मजबूत हो गई है। यही मूल कारण था कि कृषक अधिक शक्तिशाली हुए। जादुई कण, वे अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं को मजबूत कर सकते हैं और साधक का लक्ष्य जादुई कणों के साथ जुड़ना है। जब मानसिक शक्ति उनके साथ जुड़ती है तो ये जादुई शक्ति बन जाती है। जब महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त उनके साथ जुड़ते हैं तो ये युद्ध आभा बन जाती है। मरे ग्रीन की मानसिक शक्ति लहरों की तरह लगातार इस जल गुण जादुई कण से टकरा रही थी, लेकिन यह एक चट्टान की तरह स्थिर रहा, जिसमें विलय का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। नहीं, मेरी वर्तमान स्थिति में मानसिक शक्ति का एक भी धागा इसे हिला नहीं सकता। मुझे इसे अपने मानसिक सागर के केंद्र में खींचना होगा, इसे भंवर के केंद्र में डुबाना होगा और उसके बाद ही मैं अपनी सारी मानसिक शक्ति को इसके साथ विलय करने के लिए केंद्रित कर सकता हूँ। ये सोचते हुए मरे ग्रीन ने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर अपनी ध्यान की गति बढ़ा दी। मानसिक सागर तेजी से घूमने लगा और भंवर के केंद्र की विनाशकारी शक्ति मजबूत होती गई, जो किसी भी समय किसी भी लक्ष्य को कुचलने के लिए तैयार थी। मानसिक ऊर्जा क्षेत्र के खिंचाव के तहत जलगुण जादू कण धीरे धीरे भंवर के केंद्र की ओर बढ़ गया। मरे ग्रीन इस बारे में चिंतित था, वह चाहता था कि वह बस उस तक पहुंच सके और उसे सीधे दबा सके। लेकिन तभी ये जलगुण जादुई कण किसी चीज से टकराया और उसका रूप तुरंत स्थिर हो गया। ये देखकर मरे ग्रीन का चेहरा एकदम बदल गया, उसे लगा कि यह बुरी खबर है। निश्चित रूप से जिस क्षण इस जादुई कण को आजादी मिली, वह हवा में गायब हो गया। मरे ग्रीन ने इसे रोकने के लिए तुरंत अपनी मानसिक शक्ति जुटाई, लेकिन वह केवल एक छोटे से हिस्से को ही रोक पाया।
शेष भाग के संपर्क में आने वाली मानसिक शक्ति और अधिक मजबूत हो गई, लेकिन वह जादुई कण बिना किसी निशान के गायब हो गया।
अरे यार, पका हुआ बत्तख कैसे उड़ सकता है। अपना ध्यान समाप्त करते हुए मरे ग्रीन ने अपनी आंखें खोली, अपनी मुट्ठी बंद की और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका असंतोष प्रकट हुआ। कुछ ही देर बाद मरे ग्रीन, जो पहले असफल हो चुका था, शांत हो गया। हालांकि यह उनकी सफलता का सबसे करीबी प्रयास था। अभी क्या स्थिति थी? क्या उस जल गुण वाले जादुई कण ने किसी चीज को मारा? लेकिन मेरे मानसिक स्थान में मेरी मानसिक शक्ति के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए था। उसने किस चीज को मारा होगा? कुछ देर सोचने के बाद मरे ग्रीन, जो जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ता गया, उसने हार मान ली। उसने बस यह मान लिया कि उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा है, क्योंकि उसकी आंतरिक दृष्टि धुंधली और धुंधली थी, इसलिए अभी स्पष्ट रूप से न देख पाना एक सामान्य घटना थी। थोड़े समय के समायोजन के बाद मरे ग्रीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरा ध्यान सत्र शुरू कर दिया, और उसके मानसिक स्थान में एक ग्रे जादुई कण घूम रहा था। कभी वह मानसिक सागर के साथ घूमता था तो कभी अकेले ही खेलता था। अचानक वह मानसिक सागर के केंद्र की ओर, भंवर के केंद्र की ओर उड़ने लगा। लेकिन जब वह मानसिक सागर के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं था तो वह एक ग्रे मैजिक पार्टिकल से भी टकराया। बाहर देखने पर मरे ग्रीन के मानसिक सागर के केंद्र में केवल ग्रे मैजिक पार्टिकल्स का एक पैच दिखाई दे रहा था। दुर्भाग्य से मरे ग्रीन उन्हें नहीं देख पाए, क्योंकि वे ग्रे थे।
वे उत्कृष्ट छिपी हुई वस्तुएं थीं, और वे दुनिया में खोजने के लिए सबसे कठिन जादुई कणों में से एक थे, अंतरिक्ष जादुई कण।
उन्होंने पुनः अपना ध्यान शुरू किया, लेकिन इस बार मरे ग्रीन अपने शरीर के भीतर जादुई कणों को खोजने में उतने भाग्यशाली नहीं थे जितने पहली बार थे। जब ध्यान सफल हुआ और उसका आध्यात्मिक सागर घूम गया, एक भंवर का निर्माण हुआ, तो कहीं से एक हल्का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रकट हुआ, जो सभी दिशाओं में फैल गया, जैसे कि अनगिनत हाथ किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण प्रकट हुआ, जादुई कण जो पहले हवा में स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे, वे सीधे इसके द्वारा चूसे गए, धीरे धीरे मरे ग्रीन की ओर खींचे चले आ रहे थे। हालांकि ये बहुत पहले नहीं था कि एक लाल अग्नि गुण जादुई कण आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के प्रतिबंध से मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता वापस पाली। पहले अग्नि गुण जादू कण के नेतृत्व में अन्य जादुई कण भी आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के संयम से क्रमिक रूप से मुक्त हो गए। लाल अग्नि गुण, पीली पृथ्वी गुण, सियान वायु गुण, दुर्लभ गुण कण। जल्द ही नीले पानी गुण जादू कण को छोड़कर अन्य सभी गुण कण मुक्त हो गए। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पांच या छह जल गुण जादुई कण मरे ग्रीन के चारों ओर घूमते और नृत्य करते थे, जिससे उसमें एक रहस्यमय आभा जुड़ जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी इस दृश्य को नहीं देख सका। अंततः उसके सबसे निकट स्थित जल कण को उसके शरीर में खींच लिया गया। मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतजार किया, अच्छा हुआ कि मैंने हार नहीं मानी। शांत हो जाओ, छोटी सी बात है, घबराओ मत। उत्साहित मरे ग्रीन ने अपने हृदय में परमानंद को दबा दिया, ध्यान विधि को चरण दर चरण संचालित करते हुए अपनी सारी ऊर्जा को उस जल गुण वाले जादुई कण को दृढ़ता से पकड़ने पर केंद्रित कर दिया, जो उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के तहत जल गुण वाला जादुई कण धीरे धीरे आध्यात्मिक समुद्र के केंद्र की ओर खींचा गया, जो उसे भंवर के केंद्र में खींचना चाहता था। पहली बार अपरिचित है, दूसरी बार परिचित है। मरे ग्रीन ने आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का कुशलतापूर्वक उपयोग करके इसे और करीब खींचा और जल्दी से उस क्षेत्र के पास पहुंच गया जहां अंतरिक्ष जादुई कण केंद्रित थे। कुछ ही समय बाद मरे ग्रीन ने आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए जल गुण जादू कण को खींच लिया और अंतरिक्ष जादू कणों के क्षेत्र में कूद पड़े और उसके भीतर बेतहाशा उड़ते हुए अंतरिक्ष जादू कण जल गुण जादू कण से टकरा गए। जल गुण जादू कण हिंसक रूप से उड़ गया। इस स्थिति को देखकर मरे ग्रीन, जो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे, ने अपने आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से जुटाया और जल गुण जादू कण को जोर से खींचा। कड़ी मेहनत रंग लाती है। मरे ग्रीन ने पानी के गुण वाले कण को फिर से सफलतापूर्वक खींच लिया और अंतरिक्ष जादू कणों के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण की वृद्धि के साथ पानी के गुण वाले जादू कण ने लगातार दो अंतरिक्ष जादू कणों को दूर धकेल दिया। इस बार मरे ग्रीन को अपनी आंतरिक दृष्टि और आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रेषित प्रभाव की भावना के माध्यम से तुरंत इसका एहसास हो गया।
कुछ तो है ये प्रभाव, निश्चित रूप से कुछ और है। मेरे आध्यात्मिक स्थान के केंद्र में वह चीज वास्तव में क्या है?
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तीसरे स्पेस मैजिक पार्टिकल ने जल गुण जादू कण पर प्रहार किया। जल गुण जादू कण, जिसने पहले दो स्पेस मैजिक पार्टिकल को दूर धकेल दिया था और जिसकी शक्ति कुछ कम थी, तुरंत उड़ गया।
जल गुण वाले जादुई कण की अचानक उड़ान के कारण आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण ने तुरंत अपना लक्ष्य खो दिया तथा उसके ऊपर हवा को पकड़ने की भावना छा गई, जिससे घूमता हुआ आध्यात्मिक भंवर क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। क्या? जल गुण जादू कण को अचानक उड़ता देख मरे ग्रीन बहुत घबरा गया। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इसे पकड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसकी लय बाधित हो गई और वह इसे फिर से पकड़ नहीं सका। केवल असहाय होकर यह देख सकता था कि यह जलगुण जादू कण उड़ गया।
अरे, यह मेरा क्षेत्र है और मैं ही फैसले लेता हूँ। अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम कुंडल बनाओगे, अगर तुम बाघ हो तो तुम दुबक जाओगे। मेरे आध्यात्मिक स्थान में इतनी उग्रता से पेश आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस तब तक रुको जब तक मैं तुमसे निपट न लूं। ये पता चलने पर कि उसकी असफलता कई अज्ञात कारणों से हुई थी, मरे ग्रीन, जो हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से काम करने और दो बार सोचने की वकालत करता था, वह भी कुछ हद तक परेशान हो गया। अपने दांत पीसते हुए उसने एक बार फिर पानी की विशेषता वाले जादुई कण को आकर्षित किया।
चलो देखते हैं कौन ज्यादा जोर से टकरा सकता है।
मरे ग्रीन ने अपने ध्यान की गति को सीमा तक बढ़ा दिया। उनकी सारी ऊर्जा उनके आध्यात्मिक स्थान में प्रवाहित हो गई, जिससे उनकी आध्यात्मिक गुरुत्व शक्ति और मजबूत हो गई। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करते हुए जलगुण वाले जादुई कण को पकड़ लिया और उसे आध्यात्मिक समुद्र के चारों ओर तेजी से घुमाया, लगातार गति बढ़ाते हुए जब तक कि मरे ग्रीन उसे नियंत्रित नहीं कर सका। जाना, शॉटपुट फेंकने की तरह इसे फेंकने से पहले तेज गति से घुमाने से बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति पैदा होती है। आमतौर पर सौम्य जल विशेषता वाला जादुई कण जानलेवा इरादे से भरा हुआ स्पेस मैजिक पार्टिकल्स के क्षेत्र में फट जाता है। धमाका, 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 जादुई कणों की टक्कर मौन थी, लेकिन मरे ग्रीन ने आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त प्रभाव प्रतिक्रिया के माध्यम से टक्कर की ध्वनि सुनी। जलगुण जादू कण अधिकतम तीव्रता पर धीमा होने से पहले लगातार 5 या 6 अंतरिक्ष जादू कणों को दूर धकेल दिया, लेकिन यह अभी भी आध्यात्मिक समुद्र के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक भंवर के केंद्र में प्रवेश करना था। लेकिन तभी एक अंतरिक्ष जादुई कण जलगुण जादुई कण द्वारा पीछे धकेला गया, अनियंत्रित रूप से लहराया और आध्यात्मिक समुद्र के केंद्र में गिर गया। अपने आध्यात्मिक सागर के केंद्र में कुछ गिरता हुआ महसूस करके मरे ग्रीन चौंक गए, लेकिन संपर्क के माध्यम से उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह भी एक जादुई कण था। केवल वे तुरंत यह नहीं समझ पाए कि यह किस गुण का था। जादुई कण, वह आध्यात्मिक सागर के केंद्र में जा गिरा। यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, मरे ग्रीन ने अपने दिल को मजबूत किया और तुरंत जलगुण जादू कण को त्याग दिया और अपनी सारी ताकत उस दुर्भाग्यपूर्ण अंतरिक्ष जादू कण को नष्ट करने में लगा दी जो उसकी मुट्ठी में आ गया था। अरे, तुम एक जादुई कण हो तो तुम्हें भी मिलाया जा सकता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सी विशेषता हो, चलो पहले विलीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति की तरंगों ने अंतरिक्ष जादुई कण पर प्रहार किया, लेकिन अंतरिक्ष जादुई कण एक फिसलन भरी मछली की तरह था जिसे वह कभी पकड़ नहीं सका। मुझे यकीन नहीं होता, क्या पका हुआ बत्तख भी उड़ सकता है? तुम मेरे घर में गिर गए हो और फिर भी तुम भागना चाहते हो। तुम स्पष्ट रूप से मरे ग्रीन को अपनी नजर में नहीं रख रहे हो। मरे ग्रीन ने स्वयं को सफल एकीकरण से केवल एक कदम दूर देखकर, अपनी आंखें लाल और दांत भींचकर, अपने ध्यान की गति को उसकी सीमा से परे बढ़ा दिया। हताश मरे ग्रीन और उसकी बढ़ती हुई विशाल कैप्चर शक्ति का सामना करते हुए, यहां तक कि स्पेस मैजिक पार्टिकल्स, जो अपनी छिपने और बचने की कला के लिए जाने जाते हैं, भी कुछ हद तक कमजोर महसूस कर रहे थे। यहां तक कि सबसे कुशल व्यक्ति भी गलतियां कर सकता है। मरे ग्रीन के अपरिहार्य जाल का सामना करते हुए अंतरिक्ष जादुई कण गलती से आध्यात्मिक शक्ति से घिर गए और फिर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति उनके चारों ओर कुंडलित हो गई, जिससे वे बच नहीं पाए। मिल जाओ, तुम दोनों मेरे लिए मिल जाओ। मरे ग्रीन की इच्छा के तहत आध्यात्मिक शक्ति ने अंतरिक्ष जादुई कण को कसकर लपेट लिया, लगातार अंदर की ओर सिकुड़ती हुई उसके साथ विलय करने का प्रयास करती रही। अज्ञात समय के बाद मरे ग्रीन, उसकी आंखें लाल और चेहरा पीला, ने एक क्लिक ध्वनि सुनी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अंततः अंतरिक्ष जादू कण में प्रवेश कर सकती थी और दोनों ने अंततः विलय की प्रवृत्ति दिखाई। एक बार जब यह शुरू हुआ तो बाकी सब स्वाभाविक रूप से बहने लगा। आध्यात्मिक शक्ति और अंतरिक्ष जादुई कण आपस में जुड़ गए, अंततः एक ग्रे बूंद बन गई जो आध्यात्मिक समुद्र में गिर गई और उससे पोषित हुई। ये जादुई शक्ति है। आखिरकार जादुई शक्ति को अपने में समाहित करने में सफल होने पर मरे ग्रीन का पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह खुशी से उछलना चाहता था, लेकिन पिछली लड़ाई से बहुत थक जाने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मरे ग्रीन को आज अपनी पहली ध्यान कक्षा की तुलना में भी अधिक थकान महसूस हुई, लेकिन उन्हें लगा कि यह इसके लायक था, यह इस योग्य था। यह अंतरिक्ष जादू है। मरे ग्रीन की हथेली से निकलती धूसर रोशनी को देखकर आमतौर पर शांत रहने वाले शिक्षक लिंडेन ने सहज रूप से अपना मुंह चौड़ा किया और कहा। फिर उसने मरे ग्रीन की बांह पकड़ ली। उसकी नजरें मरे ग्रीन की हथेली में रखे स्पेस मैजिक पर टिकी थी। मरे ग्रीन ने देखा कि शिक्षक लिंडेन की मानसिक शक्ति उनके अंतरिक्ष जादू को ढक रही थी और उनके अंतरिक्ष जादू को शिक्षक लिंडेन द्वारा बार बार गूंधा जा रहा था। ये सही है, यह अंतरिक्ष जादू है। लिंडेन ने अपना हाथ छोड़ दिया, अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से शून्यता की भावना को महसूस करते हुए पुष्टि की कि यह वास्तव में अंतरिक्ष जादू था। आह, ये चीज वास्तव में स्पेस मैजिक है। हाँ, ये स्पेस मैजिक है, ये सचमुच अद्भुत है। ये जानने के बाद कि उसका जादू अंतरिक्ष जादू था, मरे ग्रीन का चेहरा खुशी से चमक उठा। यदि वह अपने शिक्षक के सामने नहीं होता तो वह उत्साह से नाचने लगता। जादुई दुनिया की समझ के अनुसार पूरी दुनिया चार मूल तत्वों से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। इसलिए अधिकांश लोगों का मुख्य गुण इन चार में से एक है। इन चार मूल तत्वों के अलावा प्रकाश, अंधकार, बिजली, बर्फ, लकड़ी आदि जैसे अन्य तत्व भी हैं जो विशेष तत्व हैं। और इनसे परे दो सर्वोच्च तत्व मौजूद हैं, समय और स्थान। समय विशेषता की तुलना में, जो हजार वर्षों में शायद ही कभी दिखाई देती है, स्थान विशेषता, यद्यपि अधिक बार दिखाई देती है, फिर भी असाधारण रूप से दुर्लभ है। बेशक समय और स्थान सर्वोच्च तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वे दुर्लभ हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। समय तेज हो सकता है, रुक सकता है, धीमा हो सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है, और समय के हमलों का बचाव नहीं किया जा सकता। प्रतिद्वंद्वी को समय से वंचित करना, उन्हें सीधे बुढ़ापे से मरना या प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को कुछ सेकंड भविष्य में देखना, हमेशा खुद को एक कदम आगे रखना, ये समय का भयानक पहलू है। और अंतरिक्ष बहुत व्यवहारिक है। अंतरिक्ष हमले शक्तिशाली, तेज, बचाव करने में कठिन होते हैं और विरोधियों को लॉक करके कैद भी कर सकते हैं या तात्कालिक आंदोलन की अनुमति देते हैं, जिससे विरोधियों के लिए ट्रैक करना असंभव हो जाता है।
मुरे, एक महीने से भी कम समय में आपने जादू की खेती कर ली है और यह अंतरिक्ष जादू है जो पहले स्तर का जादूगर बन गया है। आपकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है और आपकी जादू की आत्मीयता कम नहीं है, यह अंतरिक्ष रणनीति की क्षमता है। हा हा हा। शिक्षक लिंडेन का मूल्यांकन सुनकर मरे ग्रीन भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ये सब आपके उत्कृष्ट मार्गदर्शन के कारण है टीचर लिंडेन, अन्यथा मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। धन्यवाद टीचर। हा हा, सोना जहां भी हो चमकता है, ये तुम्हारा बेहतरीन प्रदर्शन है, मैंने तो बस कुछ सलाह दी थी। शिक्षक लिंडेन ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया, फिर उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उनकी आंखें मरे ग्रीन पर टिक गईं।
अब साधारण पाठ्यक्रम मूल रूप से आपके लिए बेकार हैं। आपको उन्नत अध्ययन करना चाहिए। क्या आपके पास कोई गुरु खोजने की कोई योजना है?
लिंडेन का प्रश्न सुनकर मरे ग्रीन को होश आया और वह सोच में डूब गया। जादू सीखना एक कोर्स सिस्टम और एक मेंटर सिस्टम में विभाजित है। कोर्स सिस्टम एक क्लास की तरह है, उदाहरण के लिए लिंडेन बिल कक्षा एक को ध्यान सिखाता है और सभी छात्र उसे शिक्षक कहते हैं, ये कोर्स सिस्टम है। मेंटर सिस्टम में एक शिक्षक को चुनना और उन्नत अध्ययन के लिए उसका अनुसरण करना शामिल है। उदाहरण के लिए सिमना लिंडे, अगर कोई उन्नत अध्ययन के लिए उसका अनुसरण करता है तो वे औषधि को परिष्कृत करना सीख सकते हैं और पोषण मास्टर बन सकते हैं। इसलिए अधिक जादू और ज्ञान सीखने के लिए एक गुरु ढूंढना बहुत आवश्यक है। बेशक एक मेंटर ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आसानी से पा सकते हैं। मेंटर को ये तय करना होगा कि आपको स्वीकार करना है या नहीं, और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो आपको ट्यूशन के लिए बड़ी रकम चुकानी होगी। आमतौर पर आम छात्रों को मेंटर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। मरे ग्रीन निश्चित रूप से एक गुरु चुनना चाहते थे। घर पर रहते हुए उनकी माँ पेनी कैंपबेल ने पहले से ही उनके लिए योजनाएं बना रखी थीं। वे चाहती थी कि वे एक पोषण मास्टर की दिशा में विकसित हों, ताकि एक बार जब वे जादू सीख लें तो वे अपने परिवार को बता सकें। उस समय उनकी माँ ने अपने बड़े भाई मरे ग्रीन के चाचा कैंपबेल परिवार के पहले वारिस और भविष्य के कैंपबेल मार्क्विस से सिफारिश का पत्र लिखने के लिए आग्रह किया। कैंपबेल परिवार उत्तरी भूमि में चार प्रसिद्ध मार्क्विस में से एक है और यह एक प्रसिद्ध जादू परिवार भी है जिसने कई जादूगरों को जन्म दिया है, जो जादूगर समुदाय के भीतर एक उच्च स्थान रखता है। अपने चाचा के सिफारिशी पत्र के साथ, जब तक मरे ग्रीन बहुत खराब प्रदर्शन नहीं करते, पोषण मास्टर गुरु को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वह पहले की योजना थी। अब मरे ग्रीन ने एक महीने के भीतर अंतरिक्ष जादू की खेती की है, उच्च मानसिक शक्ति और जादू की आत्मीयता के साथ, जिससे वह अंतरिक्ष रणनीति के लिए पूरी तरह से योग्य हो गया है। पोषण मास्टर बनने के लिए बैटल लॉ बनना छोड़ना उसकी प्रतिभा की पूरी बर्बादी होगी। बैटल लॉ कॉम्बैट मैच का संक्षिप्त नाम है, जो दुनिया को नष्ट करने वाले जादू को नियंत्रित करता है और शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं का स्वामी होता है। आम लोगों की मैच के बारे में यही धारणा है, लेकिन थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि यह बैटल लॉ का वर्णन करता है। आग के गोले फेंकने से युद्ध हो सकता है, लेकिन इसे बैटल लॉ नहीं कहा जा सकता। पेशेवर विशेषताओं और प्रतिभा के माध्यम से बैटल लॉ में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद, बैटल लॉ द्वारा छोड़े गए एक ही आग के गोले में अधिक शक्ति, लंबी दूरी, कम कास्टिंग समय, कम कास्टिंग अंतराल और बाद के चरणों में एक नियमित जादूगर की तुलना में कम जादू की खपत होगी। इसलिए युद्ध कानून जादूगरों का चेहरा है, जो समान स्तर पर अजेय है और अपने स्तर से ऊपर लड़ने में सक्षम है। प्रत्येक जादूगर युद्ध कानून बनना चाहता है और मरे ग्रीन कोई अपवाद नहीं है, लेकिन युद्ध कानून बनने की शर्तें बेहद सख्त हैं, जिसके लिए उच्च मानसिक शक्ति और जादू की आत्मीयता की आवश्यकता होती है। मरे ग्रीन ने पहले भी बैटल लॉ बनने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी योग्यता मानकों पर खरी उतरेगी, लेकिन अब स्थिति अलग है। अब ये स्पष्ट है कि वो मानकों पर खरा उतरता है। ये सोचते ही मरे ग्रीन के दिल में जोश की लहर दौड़ गई। कौन शक्तिशाली बैटल लॉ नहीं बनना चाहेगा? काफी देर तक विचार विमर्श के बाद, इससे पहले कि मरे ग्रीन बोल पाते, लिंडेन ने पहले बोल दिया, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वह तुम्हारा गुरु बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तुम दोनों सफल हो सकते हो या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस बारे में कैसे चर्चा करते हो। चूंकि शिक्षक लिंडेन ने किसी को पेश करने की पहल की थी, इसलिए मरे ग्रीन मना नहीं कर सके। इसके अलावा, मेंटर सिस्टम एक पारस्परिक चयन प्रणाली है। इसके सफल होने के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गंदा खेल खेलने की कोशिश करे, शुरू में उसे धोखा देने के लिए फूलदार शब्दों का प्रयोग करे और बाद में मरे ग्रीन के साथ एक मेहनती व्यक्ति की तरह व्यवहार करे, तो ग्रीन काउंट की विशाल सेना को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकेगा। सिफारिश के लिए धन्यवाद, शिक्षक। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कौन सा शिक्षक है? जब वह आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। लिंडेन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर उसे असमंजस में डाल दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन एक संदेश प्रेषित कर दिया। एक क्षण बाद, मरे ग्रीन को लगा कि उसका स्पेस मैजिक अचानक टिमटिमाने लगा और फिर उसने सहज ही अपने पीछे देखा। उन्होंने देखा कि एक मध्यम कद काठी वाला, सफेद बालों वाला, बर्फ जैसी सफेद आंखों वाला, फिर भी मध्यम आयु वर्ग का सुंदर चेहरा वाला आदमी मरे ग्रीन के पीछे आ रहा था। लिटिल लिंडेन, क्या यह वही छात्र है जिसकी आपने मेरे लिए सिफारिश की थी? इस खूबसूरत अधेड़ उम्र के आदमी की बर्फ जैसी सफेद आंखें बिजली की धाराओं की तरह मरे ग्रीन पर सीधे वार करती हुई, लगातार उसका मूल्यांकन करती हुई, और जिस क्षण मरे ग्रीन ने उसे देखा, उसे लगा जैसे वह सहस्राब्दी पुरानी बर्फ के टुकड़े से जम गया हो। उसका शरीर अकड़ गया और हिलने में असमर्थ हो गया। शिक्षक लिंडेन ने भी उस व्यक्ति को देखा और उत्साह से उसके पास गए तथा श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हाँ डीन, ये वास्तव में अंतरिक्ष जादू है। छोटे लिंडेन, तुम गलत नहीं थे, ये युवा साथी वास्तव में एक अच्छी संभावना है। मरे ग्रीन की जांच करने के बाद, मैजिक अकादमी के डीन वेबस्टर एलिस ने सिर हिलाया। उनके शांत चेहरे पर सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जैसे ही जांच करने वाली नजर हटी, मरे ग्रीन को लगा कि उनका शरीर फिर से चल सकता है। वह तुरंत डीन वेबस्टर के पास गया और एक छात्र के रूप में सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। छात्र मरे ग्रीन डीन का अभिवादन करते हैं, ग्रीन परिवार का एक युवा साथी। वास्तव में ऐसी प्रतिभा का स्वामी होना, अंतरिक्ष जादू विकसित करने में सक्षम होना, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। डीन का चेहरा शांत था जब वह मरे ग्रीन की हल्की नीली आंखों को देख रहा था। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। तुम्हारे अंदर कैंपबेल का खून है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा ने वंश को दबा दिया है। अगर कैंपबेल के उस बूढ़े को इस बारे में पता चल जाता, तो शायद वह अगले कुछ सालों तक चैन की नींद नहीं सो पाता। छोटे दोस्त, तुम मुझे जानते हो, है ना? ये सुनकर मरे ग्रीन ने प्रशंसा के भाव से उसकी ओर देखते हुए बार बार सिर हिलाया। यद्यपि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके रूप और अध्यापक लिंडेन के पते के आधार पर वह उसकी पहचान पहले ही कर सकता था। वेबस्टर एलिस, लेवल 7 आइस मैजिशियन, बैटल लॉ, एलिस अकादमी में मैजिक अकादमी के डीन स्टेनली एलिस टॉवर के वर्तमान मास्टर, उत्तर के पहले जादूगर और ड्यूक एलिस के जादूगर कोर के नेता। वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि इस क्षेत्र की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उनके बारे में जानता होगा। एलिस अकादमी के छात्र मरे ग्रीन की तो बात ही छोड़िए। आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। आपकी साधना की गति आपकी उम्र में पहले से ही मेरी बराबरी पर है। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह है कि आपने असाधारण रूप से दुर्लभ अंतरिक्ष जादू की साधना की है। इसकी तुलना में आप और भी अधिक उत्कृष्ट हैं। इस समय डीन वेबस्टर का मूड कुछ जटिल था। छोटी उम्र से ही उन्हें जीनियस कहा जाता था और उनकी उपलब्धियां वाकई उस उपाधि के अनुरूप थीं। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आज उन्हें मरे ग्रीन जैसी सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा से मुलाकात होगी। तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? डीन वेबस्टर की बातें सुनकर मरे ग्रीन बहुत खुश हुए और लगभग तुरंत ही सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को दबा लिया और कुछ झिझक के साथ कहा, छात्र बहुत चाहता है कि मैं स्वीकार कर लूं डीन और आपका छात्र बन जाऊं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिए मैं अपना जवाब देने से पहले अपने माता पिता या बड़े भाई से इस पर चर्चा करना चाहूंगा। ये जीवन का एक बड़ा निर्णय है, जैसा कि होना चाहिए। डीन वेबस्टर ने सिर हिलाया, मरे ग्रीन की तुरंत सहमत होने में असमर्थता से नाराज नहीं हुए। इस दुनिया में जादू सीखना बहुत महंगा काम है। अगर कोई गुरु मिल भी जाए और गुरु उसे स्वीकार करके सिखाने को तैयार भी हो, तो भी गुरु मुफ्त में ज्ञान नहीं देता, इसलिए परिवार का सहयोग भी जरूरी है। परिवार के सहयोग के बिना महंगी ट्यूशन फीस कौन भरेगा, खेती के लिए जरूरी सामग्री कौन जुटाएगा? गुरु असंभव, कोई भी मूर्ख गुरु ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा जब तक कि आपने खुद को उसके हाथों बेच न दिया हो। मरे ग्रीन की प्रतिभा और योग्यता के अनुसार, यदि वे स्वयं को वेबस्टर एलिस को बेचना चाहें तो वे मरे ग्रीन को स्वीकार करने और उसे सशक्त रूप से विकसित करने के लिए तत्पर होंगे। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई। मरे ग्रीन की जड़ें खत्म नहीं हुई थीं, वह ग्रीन परिवार से थे। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये ग्रीन परिवार के चेहरे पर तमाचा नहीं होगा? इसके अलावा, मरे ग्रीन खुद को डीन वेबस्टर को बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यद्यपि उसे कई प्रतिष्ठित चीजें मिलेंगी, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता खो देगा और दूसरे पक्ष की दया पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प ये था कि ग्रीन परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति आए जो निर्णय ले सके और वेबस्टर एलिस के साथ चर्चा करके पारस्परिक रूप से संतोषजनक खेती की योजना तैयार कर सके। मेरे बड़े भाई रायन ग्रीन ग्रीन परिवार के पहले वारिस हैं। वह वर्तमान में एलिस अकादमी में हैं। वारिया अकादमी में तीसरे वर्ष के छात्र हैं। क्या मैं पहले उनसे इस बारे में चर्चा कर सकता हूँ? ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। डीन वेबस्टर, जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, सिर हिलाया और फिर टीचर लिंडेन से कहा,
लिटिल लिंडेन, तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं इस साल तुम्हारे शिक्षक का बजट बढ़ा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम और भी बेहतरीन छात्र तैयार कर पाओगे।
धन्यवाद डीन। डीन द्वारा प्रशंसा किए जाने पर शिक्षक लिंडेन भी खुशी से झूम उठे, विशेषकर उसके बाद मिले बड़े इनाम को देखकर, और इसलिए उन्होंने जोर से और खुशी से उनका धन्यवाद किया।
मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने इसे अर्जित किया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, डीन वेबस्टर ने अपनी नजरें मरे ग्रीन की ओर घुमाई और अपना हाथ बढ़ाकर उनका कंधा पकड़ लिया। मरे ग्रीन इस बात से कुछ हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डीन वेबस्टर ने ऐसा इशारा क्यों किया। इससे पहले कि वह अपना सवाल उठा पाते, डीन वेबस्टर ने उन्हें चिढ़ाते हुए पूछा, क्या आपने कभी तात्कालिक गति देखी है? आह, तात्कालिक गति! इससे पहले कि मरे ग्रीन बोलना समाप्त कर पाते, एक ग्रे जादुई घेरे ने उन दोनों को घेर लिया और फिर दोनों तुरंत लिंडेन बिल की दृष्टि से ओझल हो गए। ये दृश्य देखकर लिंडेन विस्मय से भर गया। यह अंतरिक्ष की शक्ति है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आंदोलन। मरे ग्रीन को बस यह महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उसके भीतर का अंतरिक्ष जादू लगातार धड़क रहा है। पलक झपकते ही मरे ग्रीन ने पाया कि उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया है। पहले वह टीचर लिंडेन के मैजिक टॉवर के लिविंग रूम में था, लेकिन अचानक डीन वेबस्टर उसे एक खाली कमरे में ले गया। ये कमरा इतना खाली था कि एक जेड प्लेटफॉर्म के अलावा और कुछ नहीं था। तुम यहाँ थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई रायन ग्रीन को लेकर आता हूँ। मरे ग्रीन ने अपना मुंह खोला। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे जिनका जवाब वह डीन वेबस्टर से चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, डीन वेबस्टर का शरीर गायब हो गया। तात्कालिक आंदोलन, ये निश्चित रूप से अंतरिक्ष कौशल तात्कालिक आंदोलन है। डीन तात्कालिक आंदोलन का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसने अंतरिक्ष जादू की भी खेती की होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक लिंडेन ने कहा कि वह मुझे एक उपयुक्त संरक्षक से मिलवाएंगे। बैटल लॉग स्पेस मैजिक के साथ ये वास्तव में सबसे उपयुक्त संरक्षक है। उत्साह से अभिभूत मरे ग्रीन को लगा कि यह आश्चर्य अचानक आ गया है, जिसके कारण वह अपना नियंत्रण खो बैठे। सौभाग्य से उसकी मानसिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। गहरी सांस लेने के बाद वह बलपूर्वक शांत हो गया और अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा, ये जानने के लिए कि वह कहाँ है। वह जल्दी से खिड़की के पास गया और बाहर देखा। उसने देखा कि उसके चारों ओर अलग अलग ऊंचाई के कई जादुई टॉवर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जादुई टॉवर उसके वर्तमान स्थान जितना ऊंचा नहीं था। आगे अनगिनत घर उसके पैरों के नीचे गिरे पड़े थे। वाह, स्टेनली एलिस टॉवर, मैं स्टेनली एलिस टॉवर के अंदर हूँ। दरअसल ऐसा नजारा देखने के लिए एकमात्र जगह स्टेनली एलिस टॉवर के भीतर से थी। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर चारों ओर सब कुछ छोटा लग रहा था, मानो वह बादलों के ऊपर खड़ा हो और जमीन पर मौजूद हर चीज को देख रहा हो। जब कोई शिखर पर पहुंचता है तो अन्य सभी पर्वत छोटे प्रतीत होते हैं। अपने पैरों के नीचे सब कुछ देखकर मरे ग्रीन का दिल भर आया और वह कुछ अन्य विचार मन में लाने से खुद को रोक नहीं सका। एक दिन मैं दुनिया की सभी चीजों को देखने के लिए इतनी ही ऊंचाई का एक जादुई टॉवर बनाऊंगा। नहीं, मेरा जादुई टॉवर उससे भी ऊंचा होगा, जो सीधे आसमान को छूता हुआ दिखाई देगा।